用这个方式的视频。
پھر جو ماحول ہوگا آدمی غیر محسوس طریقے سے اس کا تاثر لے گا، اس کا اثر لے گا. اسی لیے ان فکروں کو بنانے کے لیے جہاں مذاکروں کی ضرورت ہے، ان فکروں کی ضرورت ہے، ایسے اس کے ماحول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام یہ باتیں مجمع کو سمجھاتے تھے اور سمجھانے کے ذریعے سے ایک بات سمجھ میں آتی تھی. پھر اس کے بعد یہ معاشرہ دکھانے کے لیے ان کو مدینے میں بلاتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں ہم کو جماعتیں بنا بنا کر جنت کے لیے بھیجا تو وہاں جو نقد تیار ہوتے تھے ان کو مدینے میں لانے کو کہتے تھے. مدینہ منورہ میں یہ مدینہ منورہ کے لوگ آتے تھے، ایک ہفتہ دو ہفتہ رکھتے تھے تو مسلمانوں کے ماحول کا اثر لے کر جاتے تھے. ایک قافلے والے آئے، ان کے مردوں کو مسجد میں ٹھہرایا اور ان کے مستورات کو عورتوں کے ساتھ ٹھہرا دیا. عورتوں کے ذمے کیا کام؟ کیوں سب کے ذمے، مردوں کے ذمے، عورتوں کے ذمے آنے والے مہمانوں کی خدمت کرنا اور انہیں جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد سمجھا. وہ دین سمجھنے کے لیے آئے ہیں تو دین سمجھا. تو قافلے والے آئے ایک ہفتہ ٹھہرے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ہفتے کے بعد ان کو بلایا اور تفقد کیا کہ ان کو ان پر کتنی محنت ہوئی ہے، انہوں نے کیا اثر لیا. انہوں نے اتنا اچھا اثر لیا تھا کہ یہ بات جواب میں کہی کہ یہ اپنے دین کے سمجھنے کے قریب ہو چکے ہیں. کہا ہو رہی ہے تو پھر دوسرے ہفتے دوسرے علاقے والوں نے کہا ہم لے جائیں گے، دوسرے مسجد والوں نے کہا ہم لے جائیں گے ان پر محنت کریں گے. ایک ہفتہ ان کے پاس انہوں نے وقت گزارا جنہیں حضور علیہ السلام نے تفقد کیا اور فرمایا قد فقہوا، یہ بات سمجھ گئے کہ ماحول اتنا اثر کرتا ہے. ایک تو ہفتے وہاں رکے لیکن اس ماحول نے ان پر اثر کیا. ہم لوگ ایسا نہیں ہے، میری عمر کے تو خاص کر کے کہ ہمیں ہمارے بڑوں کے قربانیوں کے سکتے میں، ہمارے محلوں میں، ہماری مسجدوں میں فضا ملی ہے. اگر ہمارے ان بڑے سفید بال والے جتنے ہمارے یہاں بزرگ ہیں، اگر ان حضرات نے یہ محنت کا چھٹا بنایا ہوتا تو شاید ہمیں اپنی مسجدوں میں اور اپنے محلوں میں یہ فضا نہ ملتی جس میں ہم سنبھل پاتے ہیں. ہمیں اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے اور ایک بڑے بزرگوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے جو ہماری مسجدوں کے بزرگ لوگ ہیں سفید ریش. ان سے کبھی اپنے اس شہر کی کارگر ہی پوچھتے ہیں کہ تھوڑا سا مجمع تھا اور پورے شہر میں وہ مارا مارا پھرتا تھا. قسم و پرسے کا زمانہ تھا، گشت کرنے کے لیے یہ ہمارے بیچ کے محلے کے لوگ چھوٹا یہ ادرار اور یہ بھویا اور یہ جو بیچ کا جو محلہ تھا یہ تو سب نئی آبادی ہے، وہ لوگ گاندرا تک گشت کرنے جا رہے ہیں. پانی ہے تو پانی میں ہو کر گشت کرنے جا رہے ہیں. جو نئی آبادی بستی تھی وہاں گشت کرتے تھے، پھرتے تھے اور سب جگہ انہوں نے شکلیں بنائی تھا. ان فضاؤں میں اللہ نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں تو آج ہم ان شکلوں پر پکڑی ہیں. ہم لوگوں کو اللہ پاک موقع دیتا ہے صبح میں پھرنے کا اور صبحوں میں جماعتوں میں ہم سب جاتے ہیں. ہم اگر عبرت کی نگاہ سے دیکھیں کہ اضلاع میں جاتے ہوئے، صبح میں جاتے ہوئے، کہ جہاں محنت نہیں ہے اور محنت کے نقشے نہیں ہیں وہاں کے مسلمان کا کیا حال ہے، وہاں کے جوان، وہاں کے مسلمان کیا حال ہے. کہ دین سے بہت زیادہ غفلت، جنہیں دین کا بنیادی باتوں کا تعارف نہیں ہے، ان کی بستی سے گزرا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمانوں کی بستی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمانوں کی بستی ہے. یہ تو کچھ نام پتہ چلے تو پتہ چلتا کہ مسلمان ہے. ہم اس پر اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں یہ ساری چیزیں دی ہیں اور یہ ہماری بنیادی اور اساسی چیز ہے جو یہ سب چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں. اس سے ہمارا دین بھی بنتا ہے اور اوروں کے دین بننے کا اللہ ہمیں ذریعہ بنا رہا ہے. اللہ کا بہت احسان ہے. دیکھو یہاں ہم دیکھیں تو اکثر جوان مجمع ہمارا بیٹھا ہوا ہے، اور علاقوں میں جا کر ہم دیکھیں کہ کیا کوئی جوان مسجد میں ہوتا ہے؟ کتابوں میں آتا ہے جوانی تو دیوانگی ہوتی ہے، اور شباب و شعبت من الجنون، کہ پاگل بنا ہوتا ہے، کہ جوانی میں آدمی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرتا ہے. اور نشے میں اگر جوان اپنے ماں باپ کو بھی مارتے ہیں، नशे में अगर आदमी अपने माँ बाप को बदल कर देता है, खाली शराब का नशा नहीं होता और खाली ब्राउन शुगर का नशा नहीं होता, पता नहीं दुनिया में क्या क्या चीजें हासिल करने के नशे होते हैं, उस नशे में आकर पता नहीं क्या क्या करते हैं। अभी हम लोग हमारे बुजुर्गों में मक्के के थे, उस्ताद अबू जफर उनके घर पर गए थे, तो ऐसे बैठे थे तो वहाँ कुछ मुखन्नस आए थे, मुखन्नस हिजड़े हज पर आए हुए थे, तो हम सब बैठे हुए थे, तो थोड़ी सी बात कर रहे थे, बात करते करते बहुत खूबसूरत जवान थे, वो अपनी जिंदगी पर अफसोस के मारे रो रहे थे कि हमने क्या नहीं किया। हम मुखन्नस हो गए, कल हम अपना जो काम करते हैं, एक रात की हमारी कमाई 5 लाख रुपए और बाजे मरतबा हमारी 1 लाख की रात की कमाई 10-10 लाख रुपए। अंधेरे में से उजाले में आए थे तो इन्हें इसका एहसास हुआ हम कहाँ थे, हम कैसे जिंदगी गुजार रहे थे। वो कह रहे हैं हम बहुत बड़े माल के मालिक हैं, हमारे बंगले, हम सिक्योरिटी में रहते हैं, गवर्नमेंट ने हमको सिक्योरिटी दी, 1.6 और हमारे पास बहुत ज्यादा सोना है, हम इसको अपनी दुनिया और आखिरत सब कुछ इसी को समझ रहे थे कि ये सब कुछ है। लेकिन एक एक कॉमेडियन था, वो कॉमेडियन उनसे जुड़ा हुआ था, वो इनको लेकर आया था, कॉमेडियन भी वही था बैठा हुआ, पड़ोस के मुल्क के सब लोग थे, तो उसकी मेहनत हुई उन पर, तो इन सबको लेकर आया था, तो उसने कहा हमको अपने घर से तो निकाल दिए गए, तो हम ये सरमाया घर वालों के से कटे हुए हैं और हमारी औलाद है, अब हम सोचते हैं इसका क्या करेंगे। लेकिन उसके साथ वो कह रहे थे कि हमें माहौल नहीं मिला, हमें फिजा नहीं मिली, हमें लोग नहीं मिले, कई आदमी आया और हमसे मिला, तो हमें वो निकलने की सबील मिल गई इन झंझटों से, और कि हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है जो हमसे जुड़ा हुआ है। फिर हमने उनसे पूछा, जवाब साहब से कहा आपने पर क्या मेहनत की, उन्होंने पूरी गड़बड़ी सुनाई कि मैंने ये मेहनत की, इस तरह से इन तक पहुँचना हुआ, क्या पहुँच भी नहीं सकते, इन तक पहुँचने के लिए कितने वास्ते बीच में हो गए, खादे माए तब वो हम पहुँच सके, और शुरू में इनके 1 साल तक नाज नखरे हमने बर्दाश्त किए, फिर इनकी तश्किल करके इनको हज पर लेकर आए, तो रो रहे थे कि हमने कहाँ जिंदगी गुजार दी। तो ये जितनों को देखते हैं तो उससे ये एहसास होता है कि अल्लाह ने हमको कितना अच्छा माहौल दिया है, कितनी अच्छी फिजा दी है, ये मैं नेमत के तौर पर कह रहा हूँ। अपने अभी हम लोग मुरादाबाद में चिल्ले में थे तो वहाँ की जमात यहाँ काम करके गई, तो वो जमात हमें मिलने आई, उन्हें पता चला बहुत खुश थे मुझे कुछ मिले, और कहने लगे कि हमने तुम्हारे वहाँ जाकर तौबा की है, आपके बस्ते में हम गए थे, हमने चिल्ला लगाया और हम तौबा करके आए। मैंने कहा क्या हुआ, हम तो कुछ करते ही नहीं थे, हमने वहाँ देखा कि सब लोगों के चेहरों पर दाढ़ियाँ हैं, टोपी पहनते हैं, और कितनी हमारी खिदमत उन्होंने की, खाना पका कर दिया, और आपके मस्जिदों का माहौल देखकर हमें इतनी खुशी हुई कि माशाल्लाह मस्जिदों में कुरान के हल्के लगे हुए होते हैं, बच्चे कुरान पढ़ते हैं, और उसके साथ माशाल्लाह हमने मोहल्लों में चले फिरे, कितने मज़ेदार जमात, कितनी अच्छा साथ देती है, कि हमने तय किया, कि हमको पता चला कि वहाँ की जमात आई, हम आपसे मिलने आए, तो हमें नहीं पता कि हमारी बस्तियों में आकर कौन कौन क्या क्या करके जाते हैं। इंशाल्लाह ये हमारे साथियों का जखीरा बनेगा, हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और ये जो हमारा हफ्तावारी इज्तिमा होता है, ये हफ्तावारी इज्तिमा जिस मकसद के लिए उन बुनियादों को मजबूत करें, क्या मकसद होता है, हम जो हर हफ्ते हफ्तावारी इज्तिमा में आते हैं, ये हमारा रस्म का इज्तिमा नहीं है, ये हमारी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये हुजूर अली सलाम के ज़माने के बाद से शुरू हुआ है, ये एक मकसद के लिए। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला का एक असर है हया, वो फरमाते हैं कि हुजूर अली सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद हम लोग शबे जमा में आपस में जमा हो जाते थे, और हुजूर अली सलाम वाली बातों को आपस में दोहराते थे, क्यों दोहराते थे, ताकि वो बातें ताज़ा रहे और मजमे उस पर बाकी रहे। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद हम सहाबा आपस में बैठते थे शबे जुमा में, जैसे शबे जुमा है, और इन बातों को आपस में दोहराते थे। उसूली बात यह है कि जिन बातों को दोहराया जाएगा, जिसके मुदाकरे किए जाएंगे, वो चीज़ें जिंदा हो जाएगी, और जिन बातों को नहीं कहा जाएगा वो गैर महसूस तरीके से खत्म हो जाएगी। इसके तस्करे करना मतलब है, इसको बोला जाए जिम्मेदारियों को बोला जाए, ऐसा से जिम्मेदारियों को बोला जाए, इसके चर्चे किए जाए। मौलाना हसन अब्दुल्ला ने इस अफ्तवर इज्तिमा की जो शक्ल दी थी वो इससे दी कि पंच कोस है, इसको कहते थे पंच कोसा के अतराफ, एक मरकज के अतराफ के पांच कोस के लोग हैं और हर हफ्ते में दीन की फिक्रों की बातें सुने और ताज़ा होकर यहाँ से जाए और ताज़ा होकर जाकर काम की जिस सतह पर है उस सतह को अब आगे बढ़ाने बढ़ाते हुए आइंदा तक आइंदा हफ्ते तक वो लोग वक्त गुजारें। किन चीज़ों की फिक्र करें? अपनी ज़ाती ज़िंदगी जिस सतह की अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह का बहुत एहसान है कि उस ज़ाती ज़िंदगी में अभी और जो दीन की मेहनत और दीन के अमल लाने की ज़रूरत है उसकी हमारे अंदर फिक्र आ जाए, क्योंकि हम कैसे भी हैं इस दुनिया में रहते हैं और ये दुनिया गफलत की जगह है। इसमें गैर महसूस तरीके से यहाँ के मुदाकरे, यहाँ की बातें हमें असर करती है, फिर आदमी गैर महसूस तरीके से यहाँ की जो न करने की चीज़ें उसको करने लगता है। इसका अपने मस्जिद से जुड़ना, इसके अपने तालीम के हल्कों में बैठना, इसका रोज़ाना ढाई घंटे चलना फिरना, उसमें अल्लाह की आसमान बड़ाई को बोलना, फिर हफ्तावारी इज्तिमा में आकर इसके तस्करे करना, इसको ताज़ा करना। हम अपना जायज़ा लें, खुदा न करे अगर हमारी मस्जिद की तालीम में ज़ौफ़ आ जाए, हमारे अपने ढाई घंटे में ज़ौफ़ आ जाए, हमारे हफ्तावारे इज्तिमा में ईमानिया के अदरत के तस्करों के सुनने में ज़ौफ़ आ जाए, फिर हमारी कैफियत कैसी हो जाती है? एकदम इन्हेदात आएगा और इन्हेदात आएगा ऐसा पता भी नहीं चलता। तहज्जुद गैर महसूस तरीके से छोड़ जाती है, 10-10 दिन 15-15 दिन चले गए तहज्जुद नहीं हो रही, तस्बीह छूट जाती है, जिन नफलों का एहतमाम था वो नफलें गैर महसूस तरीके से छोड़ती है, दुआओं का मानना छोड़ जाता है। ये 24 घंटे में आधा घंटा हमने दुआ नहीं मांगी आज, जो पूरे 24 घंटे मुझ पर गुजर गए और मैंने आधा घंटा भी दुआ नहीं मांगी। हालांकि दुआ तो मोमिन का हथियार है, जैसे दुश्मन अपना हथियार से दिफा करता है और सारी चीजों के मसाइल के हल के लिए दुआ हमको दी गई, लेकिन मेरे 24 घंटे ऐसे गुजरे कि मेरे दुआ में मेरा जी नहीं लगा। इसीलिए रोजाना हमको तालीम सुनवाई जाती है, क्योंकि एक सतह पर पहुंचते पहुंचते हम पहुंचे हैं, अल्लाह का एहसान है और बहुत अच्छी सतह है। इस फितरों के माहौल में जवान तहज्जुद गुजार बन गए, ये तो यहाँ जब शब्दगुजारी होती है देखते हैं और साथियों को देखते हैं माशाल्लाह। हम लोग एक दोनों गाड़ी में जा रहे थे, एक साथी हम लोग देखा फजर के बाद रुके तो थोड़ा उसको टाइम मिला तो हम आए काम करके तो गायब हो गया। अरे भाई तू कहाँ चला गया था? तो देखा तो मस्जिद में था, तो हमने कहा भाई चलो चलना है, तो फौरन साथ हो गए और उसके बाद कहने लगे 6 महीने हुए मेरी आज पहली बार इशराक गई है। अब सोच नहीं सकता आदमी कि ये जवान में 6-6 महीने तक इशराक की पाबंदी इतनी कर रहा होगा। मुझे एक साथ मिले यही थे, वो कहने लगे कि मेरी 14 साल हो गए मेरी तहज्जुद नहीं गई अल्लाह का, ये तो पता नहीं कौन कौन क्या क्या कर रहा है, इसी मजमे में सब ऐसे हीरे तैयार हो रहे हैं। अल्लाह का एहसान है, रोने धोने वाले, अल्लाह के सामने आवाजारी करने वाले, अल्लाह का एहसान है एक अच्छी सतह वाले और सब वक्त पर खरूज भी कर रहे हैं। अल्लाह का एहसान है कि जब वक्त पर सैर होते जा रहे हैं, वक्त पर चिल्ले 4 महीने जा रहे हैं और माशाल्लाह तादाद बढ़ रही है। देखो हमें कहा गया रमजान में हमारा बहुत ज़ौफ़ था, 50 जमातें भी नहीं जाते थे, हमारे इसी मजमे से कहा कि हम खरूज बढ़ा दें, तो मजमे ने बात दिल पर ली और ऐसा खरूज बढ़ाया कि सर हमारी 350 जमातें रमजान में गई सैर होते। अल्लाह का एहसान है, साथ ही बात ले रहे हैं, ये मतलब है कि मेहनत करते करते अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में निखार आता चला जाए, ऐसे ज़िंदगियां बने जैसी अल्लाह चाहता है। और अल्लाह कैसे ज़िंदगी चाहता है कि वो ज़िंदगी जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमको दी है, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगी, हुज़ूर वाली ज़िंदगी, अल्लाह उस ज़िंदगी से राज़ी हो और फरमाया जिनकी ज़िंदगियाँ इनकी ज़िंदगियों से मेल खाएगी उनसे हम राज़ी हो जाएंगे। وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ। ये अफ्तवर इज्तिमा में हमारे ये आदमी ये एहसास हो, हमारे जब भी यहाँ आने हो या दीन के मुदाकरों में बैठना, तो ऐसा ना हो जाए कि अफ्तवर इज्तिमा है सब लोग आते हैं चलो हम भी बैठ जाएं। इसको रस्मियत कहते हैं, रस्मियत के एक अमल हो रहा है, रस्म के तौर पर हो रहा है। मौलाना साहब फरमाते थे मुझे खतरा है कि ये हमारा काम रस्म पर ना चला जाए, तो फिर क्या किया जाएगा कि हमारे जहनों में हफ्तावारी इज्तिमा का इस्तेहज़ार रहे, इस्तेहज़ार। और इसकी कोई नई बात नहीं, ये इस इज्तिमा के जरिए से हमसे मुताबिक जो बातें हैं उसमें ताजगी आ जानी चाहिए। यहाँ से हर अपनी फिक्र लेकर जाए, किन बातों के फिक्र कि हमारे जिम्मे जो दीन है अपने दीन की और हमारे जिम्मे जो दीन की मेहनत है उसके हमारे अंदर फिक्र पड़े। वो कब होगा? जब इस नीयत के साथ हमारी यहाँ हाजिरी होगी, इस नीयत के साथ हमारा यहाँ बात का सुनना समझना होगा। अरमान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह के बाद बुजुर्गों से सुनी, वो फरमाते थे कि काम करने वाला मजमा का अपने अजाइम नीयत के अतबार से तीन किस्म का होता है। एक मजमा वो होता है कि जो किसी काम को करता है वो नीयत करके कि मुझे ये क्यों करना है, ये क्या करना है, ये क्यों करना है, क्यों करना है, उसकी नीयत होती है। एक मजमा ये होता है कि जिसकी कोई नीयत ही नहीं होती, मैं अभी बैठा हूँ मेरी कोई मसला नीयत ही नहीं है, बस मेरे से बात है तो मैं कर रहा हूँ, मैं बात मजलिस में बैठा हूँ तो भाई आज हफ्ता वाले इज्तिमा है सब लोग बात सुनेंगे मैं भी सुन लूँ। हर आदमी अभी अपना जायजा ले, आप सब बैठे हैं मैं भी बैठा हूँ कि मैंने आज क्या नियत की, हर आदमी अपना जायजा ले क्या बेनियत कोई नियत ही नहीं। और एक मजमा वो होता है जो बदनीयत होता है कि भाई कोई होगा तो हम देखेंगे क्या कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं, लेकिन वो मजमा बहुत थोड़ा होता है, शायद कोई ऐसा हो। और नियत करने वाला मजमा भी थोड़ा मिलता है, लेकिन बेनियत मजमा बहुत होता है कि कोई नियत ही नहीं, इतना बड़ा अमल किया और कोई नियत नहीं। नतीजे में क्या होगा? अल्लाह का वसूल ये है, रब्ता ये है कि अल्लाह बंदों को वो देते हैं जो उनकी नियत में होता है। लेकिन लिबरी मानव, जिस चीजों की हमने नियत की होगी अल्लाह हमें वो चीज देंगे। हमारी नियत में क्या चीज है अल्लाह पाक उस नियत पर देंगे। बाजे आदमी एक मजलिस में शरीक हुआ और एकदम जिंदगी बदलने के फैसले कर लिए, और एक आदमी सारा साल से आ रहा है और कोई फर्क नहीं। नियतों के असर पड़ते हैं। हम तो बहुत सारी चीजों में मोहताज हैं, दीन के अंदर भी हम मोहताज हैं और दीन की मेहनत के समझने में भी। हमारा दीन की सतह हमें वहां तक ले जाने जाती है दीन की सतह जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें समझाई है। कह लो वो मैं जिस पर हूं और मेरे सहाबा है तो ऐसा दीन बनाना। तो अभी हम देखेंगे हमारे दीन के जो सिफात है, सबर है, शुक्र है, जोहद है, जोहद है, तकवा है, पाकदानी है, इंसान है, परवानियां हैं, ये सब ईमान के सिफात हैं। कि हम देखेंगे तालीम के हक़ में जब पढ़ाई जाती है सहाबा की जिंदगी, तो आदमी जब इस एहसास से बैठा है कि मुझे अपनी सतह से आगे बढ़ना है, तब जब सबर पढ़ा जाएगा तो उसे देखेगा कि यहाँ सबर अल्लाह ये चाहते हैं मेरा सबर कितना है, शुक्र अल्लाह ये चाहते हैं मेरा शुक्र कितना है। कोई भी दिन की मजलिस में बैठना होगा फिर ये एहतसाब होगा, आदमी अल्लाह ये तकवा चाहते हैं मेरे तकवा का क्या है, अल्लाह पाक किस तरह का जहद चाहते हैं मेरा जहद क्या है, ये जहद चाहा जाता है मेरा जहद क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि मेरी जिंदगी इससे खाली है और मुझे शैतान ने तसल्ली दे दी। शैतान का एक अमल तसल्ली देना है। आपने नहीं पढ़ा किताब में जब फजर का वक्त होता है तो उठने की नियत करता है तो शैतान थपकाता है कि अभी बहुत वक्त बाकी है, उसको थपकाता है कोई बात नहीं अभी तो आराम कर ले, फिर उसके हाथ मिलती है तो फिर थपकाता है कि इतनी वो कोशिश करे कि सूरज तो हो जाए किसकी नमाज से नहीं जाए, ये थपकियां देता है तसल्ली देता है। तो ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा भाई मुझे शैतान तसल्ली दे रहा है जिस पर मैं हूँ उस सत्ता पर कि माशाल्लाह मेरा ये भी हो रहा है मेरा ये भी हो रहा है मेरा ये भी हो रहा है। इन हफ्तावारी इज्तिमा और दीन के मुदाकरों के जरिए से हमारी ये फिक्रें उजागर रहे, और जब उजागर होगी तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस पर सुझाते चले जाएंगे मुझे ये भी करना है मुझे ये भी करना है मुझे ये भी करना है मेरा ये भी बाकी है मेरा ये भी बाकी है। तो फिर हमारी जिंदगी ऐसी बन जाएगी एक नमूना हो जाएगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा की मुमताज बात थी। अल्लाह के नबी सल्लम की बातों के जरिए से जिंदगी को ऐसा बनाया था कि अल्लाह के नबी सल्लम ने हर सहाबी के लिए फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों के माने, इनमें से तुम जिसके भी इत्तेबा करोगे तुम्हें राह राह मिल जाए। कि हमारा साथी ये बनी हुई जिंदगी लेकर जब उसके मस्जिद में होगा तो उसके साथियों पर ये मुअसर होगा, साथी उसको देखकर राह लेंगे।
کو لے کر آ کے ہماری مسجد پر جمع کے ساتھی. کتابوں میں آتا ہے کہ جب یہ خوبیوں والا بن جائے گا تو برتن میں سے تو وہ ٹپکے گا جو برتن میں ہوگا. کلو اینا نیت اشہ معافی, ہر برتن میں سے وہ چیز ٹپکے گی جو برتن میں ہوگی. ہمارا ساتھی ایک ایک بنا ہوا ہے. اب ایک ایک ساتھ, اب دنیا میں خوبیاں خوبیاں ختم ہو گئی, صبر ختم ہے, شکر ختم ہے, معاف کرنا ختم ہے. اب اس کے اندر سے یہ سب ظاہر ہو رہا ہے, کسی میں سے تقوا ظاہر ہو رہا ہے, صبر ظاہر ہو رہا ہے, شکر ظاہر, یہ سب چھلک رہا ہے. یہ کسی کو کہے نہ کہے, جیسے خوشبو کوئی آدمی خوشبو لگا لے تو کہنا نہیں پڑتا کہ خوشبو تو اس کو سنگا میری خوشبو, خوشبو خود بہت جانی ہے. ایسے ہماری خوشبو خود بہت جائے گی, ہماری خوشبو تو اس کا نفع یہ ہوگا کہ لوگ اس خوشبو کو لینے کے لیے آئیں گے. صحابہ کے پاس اس خوشبو کو لینے لوگ آئے اور دیکھنے والے یہ کہتے تھے کہ ہاں دل بچ ہو نہیں سب بچ ہو نہیں کرتا, یہ غلط لوگوں کے چہرے ہے ہی نہیں, یہ اچھے لوگ. کیونکہ انہوں نے سب کو دیکھا کہ مارکیٹ میں ایسا ہو رہا ہے اور یہ کہ یہ تو عجیب و غریب لوگ ہیں, خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلاتے. جو قیدی بندے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ کیا بات تم نے دیکھے کہ تم مسلمان ہو گئے. مسجد میں حضور علیہ السلام کے مسجد میں بندے ہوئے قیدیوں کو جب چھوڑا گیا, حضور علیہ السلام نے ایک 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 آدمی آئے کھلا کے اس کو باندھ دیا. وہ بڑا شہزادہ تو لوگوں نے اس کو مارنے کی بات سوچی, لیکن حضور نے کہا اس کو مت مارا. تو اس کے پاس جا کر کھڑے ہوئے تھے, کیا نام تھا, ہاں حضرت سمان مر گیا. تو وہ ان کو باندھا تھا تو حضور علیہ السلام نے ان کو کہا کہ سماما کیا حال ہے, تو اور کڑوا جواب دیا. تو کہا سماما ایک نظر تو ذرا ہمیں دیکھو. تو انہوں نے کہا بری چیز کو کیا دیکھنا, وہ ان کو برا کیا حضور, حضور علیہ السلام کی ساری چیزوں کو برائی سے تعبیر کر رہے ہیں کہ آپ اس زمین پر سب سے زیادہ برے ہیں, تو بری چیز کو مجھے کیا دیکھنا ہے. اب حضور کی مسجد میں وہ کی ہے اور حضور علیہ السلام ان کو قیدی ہے, بندھا ہوا ہے اور قیدی کہا کیا ہے, اس کو تو قتل کیا جائے گا. حضور علیہ السلام اس کو سامنے ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ماما ایک نظارہ دیکھ لو, میں بری چیز کو کیا دیکھنا. میں تو صحابہ میں واقعہ لکھ رہا ہوں کہ تفصیل سے. تو حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اور پھر کہا اچھا بری کو دیکھنے کے لیے اسی لیے نظر مجھ سے کر لو, کیونکہ حضور علیہ السلام کو یہ اطمینان تھا کہ جب یہ نگاہ کرے گا تو اللہ پاک اس کی سب چیزیں بدل دیں گے. لیکن اس نے نگاہ نہیں کی. کوئی بات نہیں, حضور علیہ السلام دوسرے دن آئے اور پھر پوچھ رہے ہیں سماما کیا حال ہے, پھر کہا سماما ایک نگاہ تو دیکھ لو. تو کہہ رہے ہیں مجھے اس چیز کو کیا دیکھنا ہے جو میں پسند نہیں کرتا ہوں. دوسرے دن آ کر فرما رہے ہیں اللہ کے سب صحابہ لال پیلے ہو گئے, اس کو دیکھو یہ ایسی بدتمیزی کر رہا ہے. حضور علیہ السلام خاموش ہے. دو دن گزر گئے, پھر تیسرے دن بھی وہ اسی معاملے میں کرتے ہیں, اسی طرح انہوں نے حرکت کی. تو سب صحابہ لال پیلے ہو گئے کہ ایسی بدتمیزی کر رہا ہے. تو کہا اچھا اس کو چھوڑ دو, سماما کو چھوڑ دیا. جب وہ چلے گئے تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک دن میں آدمی سماما رضی اللہ عنہ آ گئے. سماما آپ کو تو ہم نے آزاد کر دیا تھا, کیسے آ گئے, اب مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں. آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کی مسجد اور جمعہ کیسی عجیب و غریب ہے. کیوں کہ خود نہیں کھاتے, ہم کو کھلاتے تھے, ہمارے ساتھ یہ کیا یہ کیا. ان کی زندگیوں میں اثر, ان کے صفات میں اتنا اثر ڈالتا, قیدی ہے لیکن مسجد کے ساتھیوں کے تعامل نے, ان کے برتاؤ نے اس کے دل کو جیت لیا اور آ کر مسلمان ہوئے. تو کہنا نہیں پڑا اور صحابہ کا یہ پیغام بن گیا کہ ہمارا وجود ایک پیغام ہو گیا. اس لیے آپ ان کی محنت میں دیکھو گے کہ جب سب محنت کے لیے علاقے میں گئے تو لوگوں کو دو مختصر باتیں کہتے تھے. پہلی بات یہ کہتے تھے کئی لوگوں اسلام لیا اور سلامتی میں رہو گے, اسلم تسلم, اسلام لیا اور سلامتی میں رہو گے. یہ کہا تو وہ لوگ پوچھتے تھے کیسا اسلام ہے, اسلام کیسے لائے. تو دوسرا ان کا جواب یہ ہوتا تھا ہمارے جیسے بن جاؤ, بس پوری بات ہو جاتی تھی, پوروں میں اسلام لانا کہ ہمارے جیسے ہو جائے. وہ کیسے تھے کہ وہ اپنے آپ کو دلیل بنا لیتے کہ ہمارے جیسے ہو جائے. اللہ کا احسان ہے ہمارا یہ مجمع کسی نہ کسی درجے میں اس پر پڑا ہے, ہمیں نہیں پتا چلتا. لیکن جو ماشاء اللہ علاقوں میں لوگ ملتے ہیں تو ہماری مسجد کے ساتھیوں کا اکرام دیکھتے ہیں, ان کی خدمت دیکھتے ہیں اور ساری چیزیں دیکھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں گئے تھے تو ہمارا یہ اکرام ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک سطح پر اللہ کا فضل ہے, محنت کرتے کرتے ہم پہنچے ہیں. اب ہمارا ہدف جو ہے وہ ہدف ہم نہ بھولیں کہ ہمیں روزانہ ان تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے یہ بات سننی ہے कि हमें कहाँ पहुँचना है, उसके नफे क्या होंगे, जहाँ हमें पहुँचना है अगर हम वहाँ पहुँचने पर पड़े तो नफे क्या होंगे। एक तो नफा यह होगा कि हमारा वजूद ऐसा होगा जिस वजूद से अल्लाह राजी है, कि हमें किसी को नहीं दिखाना, हमारा वजूद ऐसा बनाना है कि मेरा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। एक इलाके वाले सुना रहे थे एक बुजुर्ग कि हम लोग हजरत इमाम बिलाल के पास पहुंचे रहमतुल्लाह अलैह के पास, हमारे साथ कुछ लोग थे महाराष्ट्र के अंदर, और हमने हजरत से तारुफ करवाया कि हमारे फलां साहब, ये हमारे फलां साहब, ये फलां, ये फलां, ये फलां। जब सबके तारुफ करवाया तो हजरत ने अजीब जुमला फरमाया, ये फरमाया कि हाँ भाई तुमने सबके तारुफ करवाया, हमको सबके तुमने पहचान करवाई, उड़ान करवाई। कि हमारी पहचान करने से क्या होता है, हमारी उड़ान करवाने से क्या होता है, तो उससे उड़ान हो जाए जिसके लिए काम कर रहे हैं, उससे पहचान हो जाए जिसके लिए काम कर रहे हैं। कि मेहनत करते करते हमारी इस मेहनत में हम में से एक एक का ताल्लुक अल्लाह से हो जाए, ये हमारा मतलब और मकसूद है कि एक एक का ताल्लुक अल्लाह से हो जाए, और ऐसा ताल्लुक अल्लाह से बने कि अपने छोटे बड़े मसलों में हम अपने मसाइल को अल्लाह से हल करवाने वाले हों। सहाबा की इम्तियाज से बनते एक एक का ताल्लुक अल्लाह से हुआ, एक एक का ताल्लुक अल्लाह से हुआ। हुजूर वाली मेहनत के रास्ते से एक एक ने अपनी यारी अल्लाह से बनाई, इनके मर्दों ने, इनकी औरतों ने, इनके बच्चे बच्चे ने, एक एक ने अपना ताल्लुक अल्लाह से बनाया, और उसके बुनियाद पर बड़े बड़े काम इन्होंने किए हैं, हम लगे ले कर रहे और अल्लाह हमारे साथ है, ये एहसास। अभी हम लोग इस सफर में वहां गए थे जब सलमा इब्न अकवा रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़िया है मदीना मुनव्वरा का, काबा गए, काबा वहां हम लोग गए थे, वहां कुछ उलमा का जोड़ा था, उस उलमा से बात करनी थी, कुछ मुल्कों के उलमा थे तो मुझे भी ले गए थे, हम लोग वहां गए थे काबा। तो मुझे मैं वो पहाड़ी में रुकता रह गया जिस पर वो चढ़ गए थे और काफिरों को खिताब किया था, सलमा इब्न अकवा 12 साल का बच्चा, ये 12 साल के बच्चे को इतना बड़ा हौसला कैसे आ गया। आदमी को अंदर का यकीन काम करवाता है कि मुझे इस पर मिलेगा क्या, मुझे मिलने वाला क्या, कि हुजूर अली सलाम के गुलाम को इन्होंने मार दिया है, हुजूर अली सलाम के ऊंट ये लेकर चुरा कर ले गए हैं, हुजूर अली सलाम इस पर खुश होंगे और मुझे एक नेकी का काम करना। एक बच्चा भिड़ गया इतने बड़े भारी लश्कर से, एक टोला है इतने बड़े लश्कर से, एक बच्चा 12 साल का भिड़ गया, बच्चा नहीं भिड़ा है उसके यकीन ने उसको भिड़ा दिया, उसका यकीन कि ये काम करना कैसे बड़ी चीज। ये सहाबा की जिंदगी एक एक का ताल्लुक अल्लाह से बना, अल्लाह से ताल्लुक, इसलिए हम देखें अपने छोटे बड़े मसलों में इनका रुझू अल्लाह की तरफ होगा, अल्लाह से कहने वाले बने, और जब अल्लाह से कहने वाले बने तो अल्लाह ने इनको जाया नहीं किया, छोटी छोटी चीजों में इनके अल्लाह ने अल्लाह ने सुनी, बड़ी से बड़ी चीजों में अल्लाह ने इनकी सुनी। ये हमारा अदब है, हमारी यारी अल्लाह से हो जाए, हमारी दोस्ती अल्लाह से हो जाए, ताकि हम इस सारी दुनिया से मुस्तग नहीं हो जाए, हम अल्लाह से लें और अल्लाह के बंदों पर खर्च कर पाए, हमारा ये अदब बन जाए। ये और ये बहुत आसान रास्ता है अल्लाह से दोस्ती, दुनिया में सबसे आसान काम अल्लाह से दोस्ती है, माँ से माँ को मनाने से ज्यादा आसान अल्लाह को मनाना है, बाप को बहुत देर से मनता है, माँ उससे ज्यादा जल्दी मनेगी, और अल्लाह सबसे ज्यादा जल्दी मन जाता है। किताबों में आता है कि अगर 70 बार मुझसे तौबा कर दिया है मेरे पास आना, मैं मुझे बख्शिश वाला पाएगा, रहम वाला पाएगा। अल्लाह के नामों में 99 नाम है, 99 उलमा लिखते हैं कि सिर्फ एक नाम में जलालत जाहिर होती है, अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह की नाराजगी, वरना 98 नामों में से अल्लाह का रहम होता है, रहम। उलमा ने लिखा अल मुंतकिम, हम बदला लेंगे, ये थोड़ा सा भारी अल्लाह का है, वरना अल्लाह पाक रहमत वाले, शफकत वाले, माफ करने वाले, इधर उधर करने वाले। अल्लाह ने अपने अर्श पर लिखवाया है कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। 60 साल अल्लाह के दर को पुकारा है अल्लाह ने, 60 साल तक पुकारा, और एक मर्तबा कह दिया अल्लाह मेरी भूलों के माफ कर दे, अल्लाह ऐसे माफ करते हैं कि कोई परवाह भी नहीं होती, गफरतु लहु वला अबाली, कि मैं ऐसा माफ करता हूं कि मुझे कोई इतना बड़े को मैंने 1 सेकंड में माफ कर दिया, 1 सेकंड के करोड़ों हिस्से में अल्लाह एक झटके में माफ कर दिया। पैर होने के वजह से, और हजरत अली सलाम ने जैसे ही पैर के लिए हाथ बढ़ाया उन्होंने हाथ खींच लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे ये तुमने क्या किया, क्या मैं एक शर्त लगाना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ बताओ, क्या मेरी शर्त ये है कि मेरा पिछला अल्लाह सब माफ़ कर दे। और सहाबा की बातों में ये लिखा है कि बाद सहाबा आए और कहने लगे कि हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो नहीं करनी चाहिए और हमने नहीं किया, सारे गुनाह हमने किए। वो कहने लगे मेरी शर्त ये है कि मैं बैठ तो हो जाऊँ इस्लाम पर लेकिन तेरा सब पिछला माफ हो जाए। अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया हमारा तुम्हें नहीं पता अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु वल हिजरत यहदिमु मा काना क़ब्लहु वल हज यहदिमु मा काना क़ब्लहु। क्या यह है अहमद तुम्हें यह नहीं पता है कि इस्लाम कोई दाखिल इस्लाम में हुआ बस उसके पीछे जितना हुआ है वो सब इस्लाम में दाखिल होते ही पिछला सब माफ हो जाए। और हिजरत कोई करे तो हिजरत से पहले की सारी गलतियां हिजरत करते ही अल्लाह माफ कर देते हैं, और कोई आदमी हज करे तो हज से पहले जो कुछ हुआ है अल्लाह उसको माफ करता है। ये तीनों अमल बड़े हो जाते हैं। जब आदमी तवाफ ज़ियारत करता है तो फरिश्ता आता है और मलकुल महबूब को उसके कंधे पर आकर रखता है और कहता है क्यों भले आदमी अब तो नई जिंदगी गुजार ये तो आज बख्शा बख्शा है। इसीलिए कहते हैं भाजी जब आए तो उससे दुआ करो क्यों कि इसको अल्लाह ने माफ कर दिया है इसीलिए ये बख्शा बख्शा है। तवाफ ज़ियारत करने के बाद फरिश्ता ये कहता है ये हमारे अमल बख्शिश वाले हैं कि 60 साल की गुनाहों की जिंदगी हमारे अपने लाश को अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं बस तू कबूल कर ले तेरा सब माफ। इतना जल्दी तो कोई दुनिया का माफ नहीं करता लेकिन अल्लाह ऐसा माफ करता है और अल्लाह ऐसे जल्दी रोज नहीं करने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना है कि जब मेरे अल्लाह ने कुरान में पैगाम दिया जब बंदे पूछे कि मैं कहाँ हूँ तो इनसे कहना कि तुम्हें सांस की नली से भी मुझसे ज्यादा करे इधर साल है बाली अन्नी फैनी करीब मुझे बता रहा मैं अपने पुकारने वालों की पुकार सुनता हूँ फिर अल्लाह कह रहा है इनसे कहो फलियस्त जी बोली वही मीनू भी कि मेरे पास आकर तो देखेंगे ये लोग कि सर अब देखे तो भाई वैक्सी जैसे वैक्सी और हिंदा जैसी हिंदा और इकरमा इतने जहल कैसे भरी भरी लोग कि हुजूर इस्लाम के चचा का पूरी तरह से शहीद कर कलेजा चबाया है खोपड़ी में शराब पीने की कोशिश हो रही है हिंदा से कलेजा नहीं चबाया गया तो उसने वो बाहर निकाल दिया। कैसे ऐसे बुरे काम करने वाले लोग की चक्कर में आए कि हुजूर अली सलाम ने उनके शहादत पर ऐसा सदमा जाहिर किया था अल्लाह के नबी सलाम ने अपनी जिंदगी में कभी अपनी जात का कभी बदला नहीं कभी भी बदला नहीं लिया कुछ भी हुआ पूरी जिंदगी में किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई किसी से अपनी जाति बदला कभी नहीं हुआ कभी बदला नहीं। वो हुजूर फरमाने लगे अपने चचा को देखकर कि मेरे चचा को इतनी बेरहमी से उन्होंने मारा है मैं इनके 70 आदमियों को ऐसी बेरहमी से मारूं 70 का मसला करूंगा। अल्लाह ने आयत उतारी कि आकबतुम फाआकिबू बिमिस्लि मा उकिबतुम बिह कि आपको अगर बदला लेना है तो इतना ही बदला लिया जितना आपके साथ किया गया है एक आदमी तो आपने वाले इन सब करता हूँ वो है मेरे साथ है माफ कर दो तो उससे अच्छा कुछ तो कितना सदमा पहुंचा होगा ये अंदाजा करें कि हुजूर कभी बदला नहीं ले रहे हैं वो ये कह रहे हैं मैं 70 आदमियों को इनके मारूंगा कितना सदमा हुआ होगा कितना बड़ा सदमा ऐसे वहशी को ला रहे हैं और अल्लाह भी माफ कर रहे हैं नबी भी माफ कर रहे हैं अल्लाह ने इन्हें मंजूर कर लिया हिंदा को माफ किया जा रहा है कि अल्लाह का तौफीक दे दे कि थोड़ा सा अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए अल्लाह तौफीक दे दे। अल्लाह तआला फरमाते हैं जो हमारी तरफ रुजू कर दे हमको रहबरी कर दे यहदी इलैहि मन युनीब हमारा अल्लाह से ताल्लुक बने ये हमारा हदफ है एक एक का ताल्लुक अल्लाह से और अल्लाह से ताल्लुक के लिए अल्लाह को ऐसे मानना जैसे अल्लाह को मानने का हक है और उसके आमाल को जिंदगी में दाखिल करना सीख सीख कर हम अपनी इस सतह पर मुतमिन नहीं हो जाएंगे ये हमारे मुदाकरों का खुलासा एक मेहनत करते 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 एक एक आदमी नमूना बन जाए अल्लाह को प्यारा अल्लाह को अच्छा लगने लगे ऐसा अगर ऐसा हो गया तो उसका सीधा असर यह होगा इसका सीधा असर कि इसका जाति ताल्लुक अल्लाह से होकर अल्लाह का दोस्त हो जाए। दूसरा नफा यह होगा कि इसका वजूद इंसानियत के लिए हिदायत का जरिया बनेगा जैसे सहाबा का वजूद लोग उनको देखकर मुसलमान हुए हुजूर को देखकर मुसलमान हुए हमारी ये बात हमारे घर वाले देखकर मुसलमान होंगे, जैसा मुसलमान होने का हक है ऐसे ईमान वाले घर वाले बनेंगे, हमें देखकर इस्लाम कहते हैं ताजे बन जाए, ईमान कहते हैं अंदर से। इसलिए ईमान के फराइज जो है वो अंदर से ताल्लुक रखते हैं और इस्लाम के फराइज बॉडी से ताल्लुक रखते हैं। इस्लाम के पांच फर्ज है, नमाज, रोजा, ज़कात और हज और ईमान। वो बॉडी कि हमारा वजूद से हमारे घर वाले पास हो गया, हर आदमी जाएगा लेकिन मेरे अपने वजूद से मेरे घर में क्या हुआ, मेरे अपने वजूद से मेरे घर में क्या असर हो रहा है, मेरे वजूद से मेरे मोहल्ले में क्या असर हो रहा है, मेरे वजूद से मेरी मस्जिद में क्या असर हो रहा है। कि सहाबा उनकी कुछ लोग एक मुल्क में गए, कुछ लोग एक मुल्क में गए, तो उनके कुछ का वजूद पूरे मुल्क को बदल दिया, पूरे मुल्क को बदल दिया। क्या बात हो गई कि हमने हमने देखा कि इनमें कोई खोट नहीं, जिंदगी जीने के लायक ये लोग हैं, इनके डगर वाली जिंदगी है, कि इनके वजूद से बात चली। अब हम अंदाजा करें 1,25,000 साहब में से 10 से 12 वहां है, 10 से 12,000 बाकी सब दुनिया में है, तो उनके दुनिया में जाने ने दुनिया में अल्लाह के नबी इस्लाम की बात चला दी, बात चला। आप देखिए एक मुसलमान इब्न उबै रज़ी अल्लाह अन्हु, एक आदमी एक साल मदीना मुनव्वरा में रहे और अल्लाह पाक ने उनके उनके अंदर ऐसी ताकत डाल दी कि उनकी बरकत से मदीने की फिजा बदल गई। या अल्लाह वो कैसे आदमी होंगे, क्या कुछ नहीं वो आमान जिंदगी में है, लोगों को जिंदगी में खूबियां टपक रही है जो लोगों को खींचते हैं। अगर हमारी ये जिंदगी बनी तो इंशाल्लाह हमारे साथी अमले को बनाने का जरिया बनेंगे, अमला बनाकर दुनिया से जाएंगे। हमारे बड़ों की आप जिंदगी देखोगे तो उनके साथ रहने वाले उनके साथ रहते रहते उनकी फिक्रें ले ली, उनकी बातें ले ली, उनकी सोच ले ली और अब उनके डगर पर चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी खूबी की बात है। अल्लाह पाक हमें काम को मुतादी होने का जरिया बनाया, मुतादी होने का, कि हमारा हमें एक दिन मौत आ जानी है, हर एक को मौत आनी है। लेकिन मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो जुमला है कि हम 5 नहीं मरेंगे। पूछा भाई 5 किसको कहते हैं, तो ऐसी औरत है जो अकेली थी और अकेली मर गई, कोई बच्चे ही नहीं छोड़े, इसका तो नस्ल ही खत्म हो गई, सिलसिला ही खत्म हो गया। और एक औरत को है जो अपना नाम छोड़कर जा रही है, पीछे बच्चे हैं, पोते नवासे लकड़ पोते शकड़ पोते, सिलसिला चला। तो एक आदमी वो एक अकेला था और चल गया, और एक आदमी वो है कि जो अपने पीछे हजारों लोगों को छोड़कर गया। तो इसका दफ्तर कभी नहीं बन रही किताबों में आता है खैर पर डालने वाला ऐसा है जैसा खैर को खुद करने वाला, दाल वाला अलग खैरे फाइले। हमने किसी किसी बात की रहबरी कर दी, हमने हमने वो काम नहीं किया, उसने किया है, बस कोई बात नहीं। अब वो कुछ करे ना करे, हमें बख्शिश करे ना करे, हमें इस समय सवाब करे ना करे, वो हमारे नामा ए अमल में ही आना है। हारून रशीद का इतना बड़ा रकबा था, हारून रशीद का एक मरतबा बैठा था, एक बादल आया, उस बादल को लेकर कहा वो बादल तुझे जहां बरसना हो बरस, खिराज तो हमारे ही पास आने वाली है। क्या मतलब कि तू जहां भी बरसेगा जमीन मेरी है, जो बल्ला उगेगा उसका खिराज मेरे पास आएगा। कैसे हम लोग तैयार कर दे कि वो हमें सारे सवाल करें ना करें, खिराज हमारे ही अमल में आ जाए, मस्जिद की सतह से और हिंदुओं की सतह से, जिले की सतह से, फिर जब हमारा खुरूज हो तो हम अपने मुल्क की सतह से और अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पूरे आलम आलम की सतह से हम अफराद को छोड़ कर। बाजे अफराद इस उम्मत के वो है कि जो हजारों से ज्यादा काम करके जाए, हजारों से ज्यादा, हजारों से ज्यादा। पहले भी ऐसे लोग गुजरे हैं, हमारे जमानों में ऐसे लोग हैं कि वो एक अकेले नहीं है कि एक उनके इनके असवाल इनका चलना फिरना हजारों के तौबा का और हजारों के जिंदगी के बदले का जरिया, हजारों लोग। फिर कयामत के दिन पता चलेगा कि ये आदमी क्या कुछ करके गया, क्या कुछ करके गया। हमें हमें कोशिश करनी है, उसमें हम हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बात के लिए सहाबा की एक जमात थी जो कर गुजरी, मिन हम मन कबा नहबहु, और एक मजमा वो है जो इंतजार में है कब हमें मौका मिलेगा, और मिन हम मन यंतजिर, एक मजमा वो है जो इंतजार करता है, वमा बदलू तब्दीला, कि वो उसी डगर पर है, कोई चीज बदली नहीं है, तो उम्मीद है कि वो उसी मंजिल पर पहुंचेंगे। हैद सहाबा में हजरत ने पहले से पेपर आयत देखी कि ये एक ऐसी ड्रेस लगाने की बात। हम देखें एक मिसाल के तौर पर हमारे ऐसे अभी अब्दुल रहमान गाजी को गए हुए कितने दिन हुए हैं, वो आदमी ने 55 चार महीने लगाए, 55 उस उम्र के बहुत सारे लोग वक्त गुजार कर दुनिया से चले गए, ये भी चले गए वो भी चले गए, लेकिन ये आदमी ने
55 चांदने लगाए हैं, एक एक चांदने में 15-15 आदमी, 20-20 आदमी लेकर अपने साथ गए, ठीक है। अब उन्होंने ले जाकर उनको तैयार किया। अब 55 मरतबा में कितने लोग अपनी मेहनत से उन्होंने तैयार किए होंगे? अक्सर पुराने वो मिलेंगे जिनका उनके साथ लगाया था, अभी अक्सर हल्कों के जिम्मेदार ऐसे मिलेंगे जिनका यह वक्त लगाया। कुछ मुझे, हम लोग एक जमात की नुसरत में गए थे नागपुर, तो याकूब पन्ना साहब की जमात में, तो हम लोग वापस आ रहे थे, मैं आज सुलेमान, अजीत रहमान और अब्दुल रहीम खान से। वो कहने लगे मनीष साहब जब तबलीग शुरू हुई तो हम 3 दिन लगाने के लिए दिल्ली जाते थे, दिल्ली। अब वो जमे गए थे दिल्ली जाने के, हमारा ट्रेन का पास खरीदा था, हम दिल्ली गए और दिल्ली वक्त लगा कर आए 3-3 दिन। फिर कहते थे कोई जमात को खाना नहीं खिलाता था, तो मैंने घर वाले को कहा कि तू खाना पका, हमारे ऑफिसर सब आए उनको देंगे तो हमारा तनख्वाह बढ़ा देंगे। यूं करके मैं घर वाले से खाना लेकर जाता था मुझे। वो दिन गुजर गए और उनके भी गुजर गए जिन्होंने काम नहीं किया था, उनका भी गुजर गए। लेकिन क्या दोनों के नतीजे एक होंगे? आप बताओ क्या दोनों के नतीजे एक होंगे? क्या दोनों के नतीजे एक नहीं होंगे? जिन्होंने अपनी जान लगाई है, मान लगाया है, कसम फुरसे के सच में मुझे एक मरतबा कहने लगे कि भाई मुझे करीम यहाँ से जा रहे थे और हमने ये सोचा जा रहे हैं तो चलो दास अलग करने स्टेशन जाएंगे, तो हम लोग चले गए। फिर जब गए हमने कहा चलो दावत दे दें यहाँ आकर बयान कर लें, तो जुमा का दिन था हमने बयान करवाया, तो उन्होंने बयान करके हमको कहा कि जी नकद बताओ कौन दिया है, रहमान मस्जिद ने बयान किया और नकद बताओ कौन दिया है, और हमको कहा जिसका जेब नहीं है वो खड़े हो जाए। उन्होंने मुझे बताया कि ये कहा हमारे जेब भी नहीं थे, कहा तुम सब खड़े हो जाओ, कहा हमने यहाँ से नकद वही मस्जिद से भेजा, कहा हम गुनावाड़ा तक 2 महीने में पहुंचे थे, सब बस्तियों में ठहरते हैं, ये पट्टी हमारी सबसे ज्यादा मुसलमान देहात है, 120 देहात खाली शहरा तालुके में, मुसलमानों के 120 देहात शहरा और गुनावाड़ा के बीच छोटे बड़े। तो ये सारे देहातों में होते होते हमें 2 महीने लग गए। लेकिन कोई मरदा मुझे कहने लगे आप जब प्रेमन कर रहे थे मान साहब, जहां जहां हम लोग कह रहे थे ना अल्लाह का ऐसा, वहां सब जगह मस्जिदें बन गई। वो मुझे कह रहे थे मस्जिदें बन गई इन देहातों में। तो आप मुझे बताओ वो 2 महीने लगाने वाले, वो कसम फुरसे के साथ जाने वाले, अब अल्लाह ने उनको जो मजा बताया, उस जमाने में और भी लोग थे और उनके साथ उनसे गुजारने वाले और भी लोग थे, कि क्या ये और वो बराबर हो जाएंगे? क्या ये और वो बराबर? कल कयामत के दिन देखेंगे कि कौन कैसा होता है। कोई आदमी ऐसे होते थे जिनके पीछे टोले के टोले होंगे, ये जरिया बनाएंगे। किताबों में आता है कि बाद लोग ऐसे होंगे कि लोग पूछेंगे क्या ये अंबिया है, क्या ये शहादा है, कहने ये अंबिया है, ये शहादा है, कि मुख्तलिफ इलाकों से आए थे, मुख्तलिफ कबीलों के लोग और अल्लाह की नजर पर जमा होते थे। क्या आखिरत बना कर काम को मुताबिक को करते हुए हम इसका जरिया बनाए, तो उसके लिए क्या करवाए? तो उसके लिए अपने खुरूज के वक्त में हमारा खुरूज हो। हाँ शैतान खुरूज पर ताकत लगाता है, खुरूज इनके तोड़ दो, क्योंकि एक आदमी के खुरूज से 3 बड़े धंधे उजड़ गए। एक ये जो आदमी है उसके फिक्र इस खुरूज के भट्ठी में ताजा होगी, ये ईमानियत को बोलेगा, ये आखिरत को बोलेगा, ये मरने और मरने के बाद की जिंदगी को बोलेगा कि इसकी जो सतह है उससे कई गुना बढ़ेगा, इसके जोहर पर अल्लाह पाक इसे आगे बढ़ाएंगे, तो इसका मेयर बढ़ जाएगा, इसका मेयर भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि ईमान से आदमी अमल करता है, तो इसका ईमान बनेगा कि अमल वाला बनेगा। अल ईमान व यजीद व यंकुस, ईमान बढ़ता घटता है। लुक्मान हकीम ने कहा बेटा जिसका यकीन जितना मजबूत होगा इतना ये काम करेगा, इसके जिस्म से अमल निकलने वाले अमल इतने मजबूत होंगे, और जिसका यकीन कमजोर होगा उसके जिस्म से निकलने वाले अमल कमजोर होंगे। तो एक आदमी ईमानियत को जब बोलेगा तो ईमान बढ़ेगा, तो सारी खूबियां खुद बहुत बढ़ाना शुरू। अब देखो कि जो बच्चा मोहल्ले में एक फर्ज नमाज नहीं पढ़ता था वहां तहज्जुद पढ़ता है, अरे भाई इसको क्या हो गया है, इसको कुछ नहीं हुआ, ईमान बढ़ा है। एक प्लेट नहीं घर में धोता था और बस सब्जी का खाना बना रहा है, इसको क्या हुआ? कुछ नहीं, इसका ईमान बना है। खिदमत पर अल्लाह क्या देंगे वो चीज हुई है। तो एक खुरूज से यह नफा, दूसरा नफा यह होगा कि इसके साथ 10-15 आदमियों की जमात आई है, ये 10-15 आदमियों को निखार करेगा। जैसे एक साहब एक हुजूर अलैहि सलाम से 1.25 लाख का मजमा तैयार हुआ, एक मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूरा मदीना तैयार हुआ, ऐसे कुछ लोगों से तोड़ा तैयार हो जाएगा। तो इसी को यह बिठा दो, क्यों कि ये जाएगा तो सब होगा, तो इसी को बिठाओ ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुड़ी। वो बांसुड़ी बजाने ही नहीं देगा कि ये जाना नहीं चाहिए, इससे तो हजारों लोग तैयार हो गए, ये जाना नहीं चाहिए, ये पागल हो जाएगा, दीवाना हजारों लोगों को बना देगा।
अकेले हम तो अकेले ही चले थे जान ही नहीं मंजिल, मगर लोग आगे गए और कारवां बनता गया। अकेले ही शुरू हुए थे हमारे नबी अलैहिस्सलाम मदीने के मक्के के मदियों गलियों में अकेले गश्त कर रहे, कोई नहीं सुनता और ऐसे शदीद मुखालिफत है, सब जगह पीछे पीछे फिर रहा है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कबीले से बात की तो चाचा कहने लगा बोला इसके बात को सुनना, ये पागल बच्चा है, मेरा भतीजा है। लेकिन कुछ मिल गए हुजूर को, मेहनत करते करते कुछ मिल गए। पहले सब छह आदमी मिले मदीने के, छह आदमी जब रमी करके निकलते तो थाने यहाँ पर एक छोटी मस्जिद है, मस्जिद अकबा, वहाँ उनसे बात की, उनको कहा कि मैं एक पैगाम लेकर आया हूँ, आप मेरा साथ दोगे? उन्होंने छह ने कहा कि हम हमको आपके पास समझ में नहीं है, हम अभी और अपने सच्चे को लेकर आए। दूसरे साल वो बारह आदमी को लेकर आए, फिर उन्होंने उन छह के बजाय बारह से बात की, उनको कहा मेरा साथ दो। उन्होंने कहा कि हम इस तरह है इस तरह है, हमारे आपस में फूट पड़ी हुई है, हमारे दिल फटे हुए हैं, हम अपने और लोगों को लेकर आएंगे। फिर तीसरे साल में वो सत्तर बहत्तर आदमियों को लेकर आए, उनको फिर हुजूर से बात करने का मौका मिला। हुजूर ने उनसे बात की, जब उनसे बात हो गई तो उन्होंने कहा कि हम आपको ले जाएंगे लेकिन अभी तुम अपना आदमी भेजो। तो अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने जाने से पहले मुसा बिन उमैर को भेजा था, एक साल वहां रहे वो। छह आज सारी दुनिया मदीने को जानती है, मदीने की हम मिसाल देते हैं, उन छह को हम जानते हैं जो सबसे पहले उनके लिए बुनियाद बने हैं कि पूरा मदीना और मदीने से चलने वाली सारी चीजें हिजरत का हुक्म बाद में आया है। सहाबा ने हिजरत बाद में की है कि उनको कोई नहीं जानता, लेकिन क्या अल्लाह भूल गया है? अल्लाह कल कयामत के दिन उठेंगे कि जरिया बना जरिया कि हमारे साथ चलते चलते जो मजमा तैयार होगा ये हमारा बड़ा जखीरा है। शैतान कोशिश ये करता है कि हमारा खुरूज न हो, या खुरूज हो तो एक सभी खुरूज हो, साल का चिल्ला हो गया, साल का चिल्ला। मैं सुबह एक जगह पर हम साथी दोस्त बैठे थे, दो तीन साथी रिटायर्ड थे, मैंने कहा जी साहब अब आपको तो मशवरा ये करना चाहिए कि 360 दिन में घर कितने दिन रहते हैं, अब जिंदगी बची कितनी है, हमारा इसके अलावा काम क्या है, हमें ये पूछना चाहिए कि हमें घर कितना रहना है। हम देखें हालात, वाजे देखें हमारे मोहल्लों के हालात, मुल्कों के हालात, सूबों के हालात, कि हमारी सभी जिंदगी नहीं, ये तो जो लग जाए वो गनीमत है। हमसे जो चीज मुंतकिल होगा हवाओं में हम कल परसों मर जाएंगे। जो लोग हज में होते हैं हर नमाज में ऐलान होता है, एक मरतबा 58 जनाजे उठे हैं, 58 जनाजे एक नमाज में उठे हैं हरम में, 58 जनाजे, उन जनाजों में मैं और आप भी हो सकते हैं। अल्लाह ने अगर आज का मुझे मौका दिया तो मैं इसको गनीमत समझूं। किताबों में आता है जब सुबह होती है सुबह तो दो फरिश्ते ऐलान करते हैं, एक फरिश्ता ये ऐलान करता है क्यों नेकी के करने वाले आगे बढ़ो और आज के दिन को अपने मुआफिक बना ले, अपने खिलाफ ना बना, और हे बुराई करने वाले बस कर और रुक जा, कल का दिन गुजर गया आइंदा कल आने वाला पता नहीं है, आज के दिन को गनीमत समझ ले और इसने आज के दिन को अपने मुआफिक बना। ये जान के इस्तेमाल का पैगाम देता है कि आज के लिए आज के दिन जान को अच्छे इस्तेमाल कर। एक दूसरा फरिश्ता ऐलान करता है अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलफन, अल्लाह आज के दिन में तेरी मर्जी पर जो माल लगा दे उसके माल में इजाफा कर, बढ़ोतरी कर, उससे बेहतर दे जो उसने खर्च किया है, और जो तेरी मर्जियात पर इस्तेमाल न करे वो आते मुमसिकन खलफन, जो तेरी मर्जियात तेरे तकाजों पर इस्तेमाल ना हो और तेरे मर्जियात पर इस्तेमाल हो, अल्लाह इनके माल में बर्बादी को लगा। किताबों में आता है अगर कोई आदमी करने के काम में अपने आप को इस्तेमाल नहीं करना करता तो उसको न करने के कामों को इस्तेमाल होना पड़ता। वो रिवायत जो है कि अगर एक आदमी हज पर हो गया तो किसी कामों की वजह से वो हज उतार देगा तो तब तक उसका काम नहीं होगा जब तक उस वो लोग हज करके नहीं आएंगे। और जो आदमी किसी मुसलमान भाई के ताउन में नहीं चलेगा, ताउन में जो वो कर सकता था चाहे उसकी हाजत पूरी हो या ना हो, अगर वो कर सकता था और नहीं करेगा तो उसको अल्लाह के नाराज करने वाले कामों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आदमी करने के कामों का इस्तेमाल नहीं होता तो करने के कामों का इस्तेमाल होगा, ये दूसरा भारी नुकसान है। इसलिए कोशिश ये करते हैं हम इस्तेमाल होते रहे तो हमारे खरूज में हमारा अपना नफा, हमारे एक मजमा तैयार होता है। तीसरा नफा यह होता है कि जिन बस्तियों में गए हैं वहां चैन से थोड़ी बैठेंगे, कोई यहाँ आए हैं हक जमा बनाएंगे, मजदूर जमा बनाएंगे, एक शक्ल मौजूद में आएंगे, शैतान ये नहीं करता। इन हजार इज्तिमा के जरिए से हमारे एरिया फिक्रों में तस्दीक हो, अल्लाह मैं अगर मैं साल का चिल्ला लेता हूँ, मैं साल के दो जिलों पर, मैं दो जिलों पर हूँ, मैं अल्लाह से इसको मांगू कि मैं अल्लाह के लिए नकलो हरकत को सीखूँ, साल के तीन तीन महीने तीन तीन चिल्ले देने पर आऊँ, अल्लाह ने मुझे मुसल दी है मैं इस पर आऊँ ताकि अल्लाह पर मुझे जरिया बना देता,
दुनिया में लंबे लंबे वक्त खयाल करने वाले कोई बोझ नहीं समझे। हम अभी वापस आ रहे थे एयरपोर्ट में, मुझे कुछ पड़ोस के मुल्क के मिले, मैंने फैमिली से पूछने के बाद कहा कितने दिन के बाद जा रहे हो, तो मेरे बच्चे हैं और मैं 3 साल के बाद जा रहा हूँ। 3 साल के बाद जब एयरपोर्ट पर मिला, 3 साल बाद दूसरा मिला, कब मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ 2.5 साल के बाद जा रहा हूँ। फिर एक अंदर मिला, ये तो हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं, शादी हो गई इसलिए जल्दी जल्दी, वो कह रहे 2 साल में जल्दी जल्दी। दूसरा ये कह रहा मैं 5 साल तक घर नहीं गया, मैंने कहा क्यों, अब कैसे काम मेरी शादी हुई है इसलिए जल्दी जा रहा हूँ, मतलब पहले 5 साल तक घर नहीं गया। कि दुनिया के लिए लोग जुदाइयाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, कि उससे होने का इनको एहसास है कि हम यहाँ पैसे कमाएंगे, हमारे काम बनेंगे। हमारा अल्लाह के दीन के बुनियादों पर इन चीज़ों के छोड़ने की रगबत है, बीवी बच्चों को अल्लाह के रब अल्लाह की बुनियादों पर छोड़ना ही, ये जाहिर नहीं जाता कारोबार के आगे पीछे करने की शक्लें, हमारी सत्ता आगे बढ़े, खुरूज के वक्त में हमारा खुरूज हो, और कयाम के ज़माने में हमारी दो चीज़ों की पाबंदी, एक हमारी ज़ाती ज़िंदगियों में हमारे अमाल की पाबंदी। इसलिए अल्लाह पाक हमसे हमारी बनी हुई ज़िंदगियों को मांगेगा, हमारी तहज्जुद में छोड़े, हमारी तकबीरुल्लाह में छोड़े, हमारी इस मेहनत से हमारी जिंदगी बनती चली जाए, ऐसा ना हो कि हमारे कहने से वहां तो बने और हम ऐसे कैसे रहे। एक मजमा जहन्नम में होगा, वो मजमे को देखने के लिए कुछ जन्नती लोग जाएंगे, तो उन जन्नती लोगों को देखकर ये जहन्नम वाले ताज्जुब कर, जन्नती लोग जहन्नम वालों को देखकर ताज्जुब करेंगे कि तुम कैसे जहन्नम में रह गए, हम जन्नत में, तो तुम्हारे कहने सुनने की वजह से आए, तुमने कुछ अमल समझाए थे, कुछ दिन की बातें समझाई थी, हमने वो किया, हम जन्नत में चले गए, तो क्या कैसे रह गए। वो लोग ये कहेंगे हम तुमको तो बात करते थे खुद नहीं करते थे, हमारे इंफरादी अमल में छोड़ना, हमारे इंफरादी अमल, हमारे कुरान की तिलावत, हमारी सुबह शाम की तस्वीर, और उसके साथ साथ मकामी मेहनत का जबरदस्त लक्ष्य है, जबरदस्त लक्ष्य। हम सामने मिसाल के तौर पर चिल्ला जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर तो 40 दिन हमारे अल्लाह के रास्ते में गुजरे, इस गफलत के माहौल में हम हिसार में नहीं आए। हिसार कहते हैं, हिसार कहते हैं बॉर्डर को, बॉर्डर हिफाजत की बॉर्डर को, कि सब जगह इनका हालात है, अपने आप ही महफूज किले में आ गया, महफूज किले में तो आपको महफूज हो जाए, ये हिसार है। हिसार हमारे घर के तालीम का नक्शा न टूटे, कि हम सब जगह के रहे, हमारे घर की तालीम से हमारे बच्चों की चीज मुंतकिल होगी, हमारे घर में जिस अंदाज से हमको रहना है उस अंदाज से हमारा रहना हो। हमारा घर में रहने दो चीजें, एक घर में तालीम है और घर में हमारा रहने का अंदाज। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी नस्ल में ये तबलीग मुंतकिल हो, और वह ऐसा होगा कि जिस दिन हम मरेंगे हमारी तबलीग घर वालों में मुंतकिल नहीं हुई होगी, हमने और घर वालों में बहुत है बहुत, जिस दिन हम मरे हमारी तबलीग भी दफन हो जाएगी। इसलिए हम कोशिश करें कि घर की चार दीवारी में हमारा वजूद ऐसे हो जैसे हुजूर ने हमको समझाया, हमारे बच्चों के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम के घर का माहौल देखिए हैरान होती है। सैयद सुलेमान नबी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत आयशा लिखी रज़ियल्लाहु अन्हा, मैं उसको पढ़ रहा था अजीब वरी, ये घर में हुजूर कैसे रह रहे हैं कि अपनी बात घर वालों में मुंतकिल की। सहाबा फरमाते हैं हमने आधा दीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सीखा है। आधा दीन किसको कहते हैं, तो उसको हमने उनसे समझाया इसके क्या मंशा है, इससे क्या मुराद है। आधा दिन जो हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद घर में मुंतकिल, अपने बच्चों को अपनी फिक्र वाला बनाया है, कैसे बनाया कि मानूस करके बच्चों के साथ खेल रहे हैं, छोटों के साथ बच्चों। अब हुजूर कौन उनका कोई लकब दे सकता है, कोई शेख शेखुल मशाइख हुजूर बुजुर्गाने दीन, हुजूर बात पूरी हो गई, घर में जा रहे हैं इतने हशाश वशाश, इतने साहबिया फरमान के अजवाज मुतहरात के घर में आते थे तो हमसे ऐसे घुल मिल जाते थे कि हमें यकीन नहीं होता था कि हमें छोड़कर जाएंगे ही नहीं, और जब अजान होती थी तो ऐसे चले जाते थे गोया हमको पहचानते ही नहीं। कैसे घर में रहते हैं कि घर वालों को मानोस करके। मैं इसलिए कह रहा हूं जब तश्किल में जाते हैं ना तो घर वालों को हमसे शिकायत होती है, हमसे शिकायत होती है कि ये घर में ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। आज दुनिया में कमले से किसी को शिकायत नहीं, हम ऐसे नहीं बन सके जैसा बन सकता अजवाज मुतहरात के साथ। हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में बुजुर्ग ने हुजूर हैं सौकन ने, सौकन तो सौकन होती है वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो खाना भेजा तो दूसरे बर्दाश्त नहीं कर सके तो प्याले को दीवार पर मार दिया, प्याला टूट गया सालन में गिर गया, बुजुर्ग ना नाराज हो रहा है, घबरा रहा है, समझ रहे हैं कि फितरत का तकाजा है। सौकन सौकन जानते हो किसको कहते हैं कन? वो अपने छुरी तेज करते हैं, छुरी तो चिंगारी नहीं निकलती, उस एक चिंगारी को कन कहते हैं। ऐसी 100 जमा करो इसको क्या कहते हैं? 100 कन, इसको कन कहते हैं उर्दू में। वो चिंगारी आंखों से निकल जाए, फूट जाए, आंख का दौरा निकल जाए, कि ऐसे 100 कने जमा करो तो एक 100 कन तैयार होते हैं। आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता, वो कोई भी हो, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनको कैसे दिया? अजवाज मुबारक कह रही है कि हमारे साथ ऐसे रह रहे घर में छोड़कर जाएंगे, बच्चे घर में है, बच्चे घोड़ा बन गए, घोड़ा हुजूर घोड़ा बन गए, और यहाँ बिठाते गोल गोल घूम रहे घर में। हजरत उमामा उनके नवासी है, हुजूर यहाँ कंधे पर बिठाते। हुजूर अलैहिस्सलाम का मामूल था मार्केट को चेक करने जाते थे कि मार्केट में क्या हो रहा है जोर के बाद, तो यहाँ हजरत उमामा को बिठाते और बाजार में फिरते थे कि क्या अब आज मौलवी साहब या इमाम है आकर आज लेकर निकलेंगे, रश्मि को समझ में नहीं आएगा, इमाम साहब गांडे हो गए, तो इमाम से छोटे कर दो, ये तो बच्चे को लेकर कंधे पर लेकर निकले। हमने ये चीजें उन तक समझी नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम रोज का मामूल है अपने बच्चों को कंधे पर बिठा रहे हैं, ये घर में ये चीज नहीं। सहाबा के साथ इतनी मोहब्बत से बरत रहे हैं, इतनी मोहब्बत के साथ, हर सहाबी का दिल का विश्वास ये है कि मेरे नबी मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं, मुझे चाहते हैं, मुझे लाड़ करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। हमारी मजेदार जमातों को हमें लेना है, हमारी मजेदार जमात में हर आदमी हमारी परीक्षा पर नहीं होगा, हमारी तबीयतों पर नहीं होगा। सहाबा में अलग अलग मिजाजों के लोग हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम हर एक के मिजाजों की रियायत करके इनको जोड़ दिया, ऐसे जोड़ा प्यार मोहब्बत से कि जिसका जो मिजाज है हर आदमी कैसा नहीं हो सकता। उमर फारूक का रज़ियल्लाहु अन्हु का अलग मिजाज है, खालिद बिन वलीद का अलग मिजाज है रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर सिद्दीक का अलग मिजाज, सबको जोड़ दिया। एक मरतबा यूँ बैठे थे हुजूर अलैहिस्सलाम, यूँ बहुत मजा ईजा मुबारक याद रखी, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आए, हुजूर ऐसे ही बैठे, हजरत उमर फारूक आए ऐसे ही बैठे रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर हजरत उस्मान गनी आए तो पैर पीछे कर दिए और मुंगी मुबारक यूँ कर दी। लोगों ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये क्या किया, ये आए तो कुछ नहीं, ये आए तो कुछ नहीं, और इनके लिए आपने ऐसा किया, तो फरमाने लगे कि इनके अंदर हया है, इसकी ऐसी हया है फरिश्ते भी उससे हया करते हैं, मैंने उसके मिजाज में ये किया कि हुजूर अपने साथियों को ऐसे लेकर जाए। हमारी मस्जिद में नए नए साथी तीन तीन दिन लगाकर आते हैं, अब हम ये चाहे वो जगह बर्बादी बन जाए तो होगा नहीं, और इस जमाने में तो बिगाड़ के असबाब बहुत ज्यादा है, बनने के असबाब कम है। बहुत सारे ऐसा कहते हैं कि मौलवी साहब पहले तो तीन दिन आदमी जाता था तो ऐसा बन जाता था, ऐसा बन जाता था, और अब तो चार चार महीने जाते हैं और कुछ फायदा नहीं होता। सही बात है, आप सोचें कि क्या आज से 25 साल पहले बिगाड़ के ये असबाब थे जो आज है? आज असबाब बिगाड़ के बहुत बढ़ गए, जमाने भी महफूज नहीं, हरम महफूज नहीं है बिगाड़ से, वहां पर गुनाह करते हैं, मस्जिदें महफूज नहीं, बच्चे यहाँ मोबाइल खेलते हैं। अब हमें तदरीजी तौर पर जहन साफ करके एक ऊपर ले जाना है, और जितना जमाना हुजूर से दूर होगा इसमें जवाल रहेगा, इसमें नूरानियत नहीं आएगी, जवाल आएगा। एक बुजुर्ग का वाक्य लिखा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह का, कि उनकी जवानी का जमाना था, एक औरत आई, उस औरत ने उनको बुराई की दावत दी, तो उन्होंने रवाना कर दिया उसको। बुढ़ापे में एक औरत में वजू बना रहे थे, तो वसवसा यह हुआ कि मुझे उस औरत ने दावत दी थी, मैंने उस औरत की दावत क्यों कबूल नहीं कर ली, ये वसवसा था। तो परेशान हो गए कि मैं जब भट्टा कट्टा जवान था तब तो मैंने उसको कबूल नहीं किया, और बुढ़ापे में ऐसा वसवसा आ रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और फरमाया गम न करो, बात यह है कि तुम्हारी जवानी का जमाना हमसे जमाने के करीब था, हमारे जमाने से करीब था, उसमें नूरानियत थी, और तुम्हारे बुढ़ापे का जमाना हमारे जमाने से दूर हुआ है, उसमें जुल्मत है। हमारे रोज जुल्मत के दिनों के करीब हम हो रहे हैं, इतनी जुल्मत आएगी कि अल्लाह कयामत आएगा। इन्हें प्यार मोहब्बत से हमें अपनी मस्जिद की जमातों को लेना है, और उसके लेने के लिए इनकी खूबियों को देखना है। ये कम खूबी है कि ये मस्जिद में अपने बगल, देखो सब जगह खुराफात है, उन खुराफात को छोड़कर हमारे पास मस्जिद में आया है, इससे बड़ी और क्या है खूबी? अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया जो मस्जिद में आए उसके ईमानदार होने की गवाही दो। भाई ऐप तो सब में है, ऐप में कौन नहीं है, ऐप किसमें नहीं? हमारे इन साथियों को अपना जखीरा समझ कर ये मेरा जखीरा बने, अपने साथियों को प्यार मोहब्बत से लेना है, इन्हें अपनाना है, और हमें इनको अपनाते हुए प्यार मोहब्बत के साथ मस्जिद का साथी बनाना है। जो नए नए वक्त लगाकर आते हैं, हमारी मस्जिद की सतह नहीं बढ़ रही है, 10 बैठते थे एक जमाने से, वही 10 है, 15 है तो 15 है, हम ऐसे इनको ले लें। आप देखो का वाक्य कि सुलेमान फजर की नमाज में नहीं आए तो हर वक्त ढूंढ रहे हैं कि सुलेमान कहाँ चले गए, तो घर वालों ने कहा अगर आपकी इबादत न दे तो सुबह में आग लग गई, हजरत ने इतना हमारा मजेदार जमात का हमला, उसको हम प्यार मोहब्बत से ऐसे दें कि उसका दिल हमसे चिपक जाए, फिर उसको अपने काम में इस्तेमाल करें। उसके लिए जो बड़ा मजबूत शक्ल है, मजबूत शक्ल अपने इस माहौल को बनाने के लिए हमारे ढाई घंटे। देखो हम 40 दिन अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, 320 दिन हमें अपने घर पर बैठना है। उन 320 दिनों के जमाने में हम कैसे वक्त गुजारेंगे? अगर ये दिन हमारा नकलो हरकत मोहल्ले में नहीं, ये नकलो हरकत इतनी ताकत वाली चीज है, इतनी ताकत वाली चीज है कि मोहल्ले में एक फिजा बन जाएगी, मोहल्ले की गंदगी साफ हो जाएगी इससे, और एक मजमा इसके जरिए से तैयार होगा। मोहल्ले में जो मजमा है वो मस्जिद वाला बनेगा। जब हमारे ढाई घंटे की मेहनत का हदफ होकर एक एक घर की मुलाकात जमकर होगी, ढाई घंटे हमारे गाँव में अल्लाह बरकत देंगे, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अगर ये वजूद में आ गया, हमारे दुनिया के कामों को अल्लाह आसान करेंगे। इस यकीन के साथ घड़ी देखकर हमारे ढाई घंटों की मुसीबत, सबसे बड़ी बात यह हो रही, हमारे सारे तकाजे लोगों से जुड़े हुए, चार महीने चले लोगों के से रहने, लोग घरों में हैं और हम मस्जिद में हैं। हम सोचे कि हमारा ढाई घंटे में से कितना लगता है, अगर इतना बड़ा मजमा ढाई घंटे लगाने पर आ जाए तो मकाम फिजा एकदम जितनी है उससे कई गुना बदल जाएगा, और फरूज में पता नहीं कितना इजाफा होगा। लेकिन डरेगा वो जो इसको अपना तोशा समझ रहा है, आखिरत का सखीरा। हमारे ढाई घंटे घड़ी देख कर मजबूत हो, उससे मोहल्ले का फिजा बनेगा। जो मजमा मस्जिद में आ जाए उनको ऐसे रहना है जैसे हुजूर की मस्जिद का हुजूर लेते थे, हुजूर की मस्जिद नसरानी का एक वक्त आया हुजूर की मस्जिद, वो लोग बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज पढ़ा, एक महीना हुजूर की मस्जिद में उस वक्त ने कयाम किया, बात समझने के लिए हुजूर से कुछ बातों की बात करने के लिए, हुजूर की मस्जिद में एक महीना उन्होंने कयाम किया, और रोजाना हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं कि बैतुल्ला की तरफ और वो वक्त पढ़ा बैतुल मुकद्दस की तरफ, एक मस्जिद में दो नमाजें पढ़ो। एक महीने तक हुजूर ने पूरे महीने में एक मरतबा नाराज क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ आए हमारे तरीके पर तो कम से कम नमाज पढ़ो? अपने मस्जिद में आने वालों को ऐसे लगे हाथ ले लेना, एक एक को अपने वाला बना देना कि हुजूर के पास आया हुआ हुजूर का बनकर जाता था। एक तो मोहल्लों के लोगों को अपने से मस्जिद से जोड़ना है, उसके लिए ढाई घंटे हमारे मजबूत बने। पहले हमारा ये होता था कम घर में जाते थे, घर में बैठकर बात करते थे, घर में बैठकर बात करने से इतना बड़ा नफा होता था कि घर के 10 मेंबर हैं, हमने बात एक से की है लेकिन घर के सारे मेंबरों के कानों में आवाज पड़ती। जब हम घर में जाकर बैठकर बात करते हैं तो औरतों की फितरत है, वो चुपके चुपके सुनती है कि क्या बात हो रही है हमारे मियाँ से, हम बेफिक्र उसको दे रहे हैं, वो उसकी घरवाली की भी बनेगी, उसके बच्चों की भी बनेगी। आज हमने आज ही देखा, सुबह फजर के बाद गेरू की जमात की तश्कीलों में गए तो उन्होंने कहा घर में बैठकर बात करने का फायदा होगा क्योंकि मसाइल घर के हैं। हम तीन जगह पर गए, तीनों के घर वालों के मसले थे, तीनों से बात हुई, तीनों ने ताउन कर दिया। घर वालों को हमारी फिक्र में हमें शरीक होना करना पड़ता है, उसके लिए हमारे घर में घर घर जाकर घरों की मुलाकातों का मजबूत निजाम। और उसके बाद तीसरी जो मेहनत है, हमारे मोहल्ले में अगर ये फिजा बनी तो उसके बाद गश्तें भी मिलेंगे और सब कुछ होगा। दूसरे गश्त का हमारा मजबूत निजाम, दूसरे गश्त के जरिए से हमारे जो मोहल्लों में हमारी मस्जिदें जमातें कमजोर हैं, हमारे उन मोहल्लों में अगर सही रुख के साथ दूसरा गश्त वजूद में आ जाए तो हमारी बस्ती एक नमूना बन जाएगी, नमूना नमूना जैसे मदीना मुनव्वरा नमूना बनाए, और उसके लिए जरिया हमें और आप बन जाएंगे। हमें कब मौत आ जाएगी हमें नहीं पता है, लेकिन इंशाल्लाह अगर ये शक्लें कुछ बना कर गए, अपना उसमें इस्तेमाल हमने कर लिया और ये चीज़ें हमने कर ली, तो इंशाल्लाह इतने अच्छे अल्लाह के लोग हैं, इतने अच्छे। हजरत मौलाना नसर रहमतुल्लाह ने का एक बयान पढ़ा, उसमें हजरत फरमाते थे किसी को कह रहे थे कि अल्लाह की जात से उम्मीद है बख्शिश तो हो ही जाएगी, अल्लाह ने ऐसे सबब पैदा किए हैं मगफरत के, इतने सबब है कि मगफरत तो हो ही जाएगी। ये इसलिए सब कुछ कर रहे हैं कि तमन्ना ये है कि हुजूर की जमात में हमारे शरीक हो जाए, कि हुजूर की जमात में हम शरीक हो जाए, कि हुजूर के झंडे के नीचे जमात जाएगी, सहाबा होंगे और दीन की मेहनत करने वाले, हमारा उनके साथ हमारा भी हशर हो जाए। और अल्लाह की रहमत सबके लिए आम है, हमें अपने अल्लाह को अपने अजाइब बताने हैं। इंशाल्लाह अगर हम अपने अल्लाह को अजाइब बताएंगे, अल्लाह बंदों को उनके नियतों पर तौफीक देते हैं। अल्लाह कहते हैं मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक मामला करता हूँ। ये जितने लोग कर रहे हैं उनके और मिट्टी के बने हुए नहीं है, वो हमारी तरह ही हम जैसे मिट्टी से बने हैं, लेकिन उनके अजाइब पर अल्लाह ने इनके लिए सबील पैदा किया। हमारे मौलाना यूनुस डोडिया मलहूम रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा कहने लगे कि हम घर में मोहताज में थे और
हुसैन खान साहब ने हमारा हाथ पकड़ लिया, मेरा और मालिक का रहमान बंबई वाला, और हम दोनों को बैतुल्ला के सामने खड़ा किया और बैतुल्ला के सामने खड़ा करके कहा कि तुम अल्लाह से दुआ करो इस बैतुल्ला के सामने खड़े होकर कि ऐ अल्लाह हमें इस काम के लिए आफियत के साथ फारिग करना है, इस काम के लिए हमको फारिग करना है। वो मेरे मालिक के रहमान से भी सुना, मरियम से भी सुना। तो उसके बाद वो कहने लगे सब यकीन मानो मैं इतना मशगूल था बंबई में, इतना मशगूल था, बस इसके बाद अल्लाह ने मुझे फारिग कर दिया। वो हर तकाजे पर चलते थे। तो वो कहने लगे कि मौलाना ने कहा बच्चे बना तुम्हें फारिग कर दिया, फिर अपने आप को बचाना मत, फिर चलते ही रहना, चलते ही रहना। अल्लाह का बंदा अल्लाह के रास्ते में अफ्रीका में जाकर दफन हो गया। हमें अल्लाह से मानना है, तेरी यह दुनिया है और इस दुनिया पर तेरी ही चलती है, हम इसके गुलाम नहीं है। अल्लाह इस दुनिया को तो हमारे गुलाम बना दे और हमें अपने लिए फारिग कर दे। अल्लाह इस दुनिया को तो हमारे लिए आसान कर दे और अल्लाह इस दुनिया के लिए तो हमें मशगूल न कर, इस दुनिया को हमारे लिए आसान कर दे और हमें इस असली मेहनत के लिए फारिग कर दे। और जब अल्लाह फारिग करें तो हम अपने परवानियों के सतह को बढ़ाएं, हम अपने आप को बचाएं। जब हमारे अल्लाह के साथ ये अजाइम होंगे और ये फैसले होंगे तो अपनी अल्लाह की तरफ से चलती है। अल्लाह अपने रैद निजाम से हमारी चीज़ों को करेंगे, हमारे बच्चों की निगरानी अल्लाह करेंगे, हमारे रोजी का इंतजाम अल्लाह करेगा और ऐसा करेगा कि अल्लाह बगैर जिक्र के बगैर जिक्र। मौलाना इस रमदान की बात एक जगह पड़ी, हजरत फरमा देते हैं कि लोग गाड़ियां खरीदेंगे तुम इसको इस्तेमाल करो, लोग घर बनाएंगे अल्लाह तुम रखिया की जगह लेगा, और लोग दुनिया कमाएंगे और तुम उसको इस्तेमाल करो। हमें मांगना नहीं है, हमें किसी से चाहनी नहीं मांगनी, हमें किसी की चाय नहीं मांगनी। हम क्या कह रहे थे कि हम तुमसे चाय का नहीं सर लाई हमें तुम जैसा बड़ा शुक्रिया, हम तुमसे ये भी नहीं कहते कि हमारा कमजोरी को भाई शुक्रिया जैसा, हम तो इसका बदला ही अल्लाह से, हम अल्लाह से लेंगे और महमूद को लगाएंगे। मांगो उसी से जो तेरे खुशी से कहे ना किसी से, हमें अपने अल्लाह से लेना है। हम अल्लाह का काम करते हैं, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन, तेरा काम करेंगे और तुझसे मांगेंगे और तुझसे लेंगे। और अल्लाह हमारे बुजुर्ग बनते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, इतनी दुनिया फिरे हैं कि अगर यहाँ पर मादा देना चाहे तो इसका पूरा बजट खत्म हो जाएगा, एक एक सफर में इतने खर्चे कर रहे हैं। अल्लाह मेरा है, अल्लाह सबका है, अल्लाह मेरा आपका भी है, अल्लाह से सौदा कर रहे हैं, अल्लाह से मामला कर रहे हैं, अपने आप को अल्लाह के सामने पेश कर। साहब ने अपने आप को पेश किया, कैसे पेश किया, वो पहला दिन था जब पेश करने का, ऐसा पेश कर दिया कि फैसले हो गए। फैसले बदर के मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तीन मरतबा खुतबा दिया, पहले मरतबा खुतबा दिया तो महाजरीन ने जवाब अनसर महाजरीन ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हम आपका साथ देंगे, और कैसा साथ देंगे, ऐसा साथ देंगे हम बनी इसराइल की तरह नहीं कहेंगे कि आप कर रहे हैं और आप अपने अल्लाह के साथ हम नहीं रहेंगे, बनी इसराइल ने ऐसा कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हम आपके साथ चलेंगे। फिर उसने अलैहिस्सलाम ने दोबारा खुतबा दिया, कौन मेरा साथ देगा, क्योंकि बदर में अजीब व गरीब मानता हुआ है, अजीब व गरीब हालात है, क्या हालात है, अगर उसके सुनिए हम तो ये समझते हैं बदल कर पैदा हुआ बदल ना, कलेजा जो है कलेजा मुंह पा जाएगा, ऐसा बात है कि दुश्मनों से लड़ाई नहीं ले रही है, शक्ल में दुश्मन है लेकिन रिश्तेदार को रिश्तेदार को मारना है। अल्लाह के नबी सलाम यहाँ मेरे सामने मुझे दामाद खड़ा है, मारो दामाद को, कौन मारेगा, किसका जिगर है दामाद को मारना, यहाँ अल्लाह के नबी खड़े सामने चचा है मारो चचा को, कौन मारेगा चचा जिगर है मार के देखो, यहाँ हजरत अब्बा जी का खड़े हैं और सामने अब्बा जी खड़े हैं मारो अब्बा जी को, कितना जिगर है, यहाँ हजरत अब्बा जी सिद्दीक खड़े हैं और सामने बेटा तो हमारे खड़ा है मारो, कितने मारने की हिम्मत है, यहाँ मुसा कहते हैं जब आप सामने अमेर खड़े हैं और सामने भाई खड़ा है मारो किसको मारोगे, भाई को मारोगे। सहाबा ने करके बताया है, जब ये बात हजूर ने दोबारा खुतबा दिया तो साथ खड़े हो गए और कहा अल्लाह के नबी आप हमसे क्या लगे हो, हमारा फैसला सुनो, ये कहकर सुनाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हम आपसे वो नहीं कहेंगे जो बनी इसराइल ने कहा है, हम आपसे ये कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे और ऐसे जाएंगे कि अगर आप हमको ये कहोगे हम अपने घोड़े इधर से दौड़ा और अगर अपने रिमान जो यमन का इलाका है तोड़ा के चले जाओ, तोड़ा के चले जाओ, आप हमको देखेंगे हम अपने हिम्मत पर घोड़े दौड़ेंगे। और हजूर आप हमसे पूछते हो साथ में नहीं दिमाग, हमने ये फैसला किया है कि अगर आप हमको समंदर में छलांग लगाने को कहोगे हम समंदर में छलांग लगा देंगे, और अगर आप हमको पहाड़ से लड़कने को कहोगे, पहाड़ क्या चीज है उससे लड़कने पे आसान कर दो, हम पहाड़ से लड़क जाएंगे। और फरमाया बुजुर्ग आप हमारे रिश्तेदारों की बात कर रहे ऐसा दूध को जोड़ दो और जिनसे काटना हुआ दूध से काट दो। ऐसा नहीं होता कि हमारे अंदर बाढ़ आ जाएगा, कौमा ग्रामीमा खनमा आएगा, कुछ नहीं। हम अल्लाह के लिए जुड़े हैं, जिनसे जोड़ना हो जोड़ दो और जिनसे काटना हो उनसे काट दो। जिनसे जोड़ना हो जोड़ दो, जिनसे काट। और वही माल के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, हमारा वो माल जो आपकी मंशा पर लग जाए वो हमारे उस माल से बेहतर है जो हमारे पास रहे। माल भी ये और सब बस बात ये हो गई, वो जो खुश हो गए। और आखिर में फरमाया कल आप मैदान में देखोगे हम आपका ऐसा साथ देंगे कि अल्लाह आपको खुश कर देगा। बस ये अजाइम उनके अजाइम फैसले पर बात किया अल्लाह के बुनियादों पर। फिर अल्लाह ने ऐसा फैसला किया, ऐसा उस दिन को यौमुल फुरकान कहा, यौमुल फुरकान कि ये फैसले का दिन। और ये बदर वाले जिन्होंने ये फैसला किया है ये ऐसे मुकद्दस लोग हो गए, ऐसे मुकद्दस लोग कि ये अब आज के बाद जो कुछ करें ये बख्शे बख्शे आए हैं, ये सब माफ हो गए आज के बाद जो कुछ करें। और किताबों में आता है कि इनके नाम लेकर दुआ करो, ये ऐसे मुकद्दस हस्तियां हैं कि अगर कोई इनके नाम के वसीले से दुआ करेगा उनकी दुआ भी कर लो। मर रखे ना फैसले करना। ये जब इनके असाइन हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सब टेक किया अल्लाह के सामने और अल्लाह से कहा अल्लाह ये मवाद लेके मैं एक मजमे को लेकर आया हूँ, ऐसा जुमला तारीख में और कहीं नहीं मिलता। बुनियाद है अगर ये खत्म हो गई तो अल्लाह तेरी जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं। अल्लाह को ऐसा रहम आया है, ऐसा रहम कि हुजूर अलैहिस्सलाम रोए हैं पूरी रात। अल्लाह नेमत के तौर पर हुजूर को कह रहे हैं कि हमने आपकी बात सुन ली, सब लोग टेंशन में है, अल्लाह ने इनकी मदद की और सामने वालों का टेंशन बढ़ा दिया। ये जहां थे अल्लाह ने बारिश बरसाई, बारिश बरसते ही इनकी जमीन सफल हो गई, वो बारिश बहकर काफिरों की तरफ गई, उनके लोग कीचड़ हो गया। और रात में वो टेंशन में थे, सहाबा को अल्लाह नेमत के तौर पर कह रहे हैं सबको सुना दिया, सबको भूल आ गई ताकि सुबह फ्रेश हो जाए। और अल्लाह के नबी सलाम पूरे रात रोए हैं, मजमा सुन गया है, मेहनत करने वाले रातों पर रहते हैं, अंधेरे के दिन निशाने पर रहते हैं, अंधेरे के दिन निशाने पर हमारे रातों की ताकत ऐसी होती है। मैं ऐसा फरमा देते हम मखलूक से ज्यादा रब पर 10 गुनी मेहनत करेंगे हमारा रोना होगा, रुक से हम अल्लाह से कहेंगे अल्लाह ही ये हमारी मजेदार जगह, ये हमारे साथ है, ये हमारे अल्लाह के साथ है, उनके पेट के पीछे। किताबों में आता है 6 दुआएं रद्द नहीं होती, 6 दुआएं, उसमें एक मुसलमान जो उसके पीठ के पीछे और ये सबसे ज्यादा कबूलियत के करीब होगी। हम वहां उसमें में दुआ की सुबह में अल्लाह पाक ने 5000 फरिश्ते भेजे जिन्होंने इन काफिरों को बांध बांध कर लाया। एक साहबी ने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास से पकड़ लिया, छोटे से साहबी ने, और क्यों लेकर चलते थे बाल, क्योंकि हजरत अब्बास इतने बड़े थे कि जब उन पर बैठते थे उनका पैर जमीन में घिसटते थे इतने बड़े थे। हाँ, और इतनी भारी आवाज उनके थी कि 8 किलोमीटर तक आवाज जाती थी, कैसे पठाना भी इतने बड़े आदमी। तो उनको उनके सामने पकड़ कर लाए फिर वो ताऊ में चलते थे, तो उन्होंने एक आदमी मिला तो कहने लगे मैं पकड़ कर लाया और उन्होंने ताऊ में डाला। तो हजरत अब्बास कहने लगे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, ऐसे कह रहे हैं मैं पकड़ कर लाया। फिर दूसरे मतलब एक को कहा मैं पकड़ कर इनको लाया, तो मेरा खून खोल गया कि बच्चा ऐसा कह रहा है मैं पकड़ कर लाया। तो जब तीसरी मतलब कौन बोला चुप बैठ तूने नहीं पकड़ा है, वो सफेद घोड़े वाला सफेद कपड़े सफेद रवाने वाले ने मुझे पकड़ लिया, तेरे हाथ में ले लिया, उसने भी राग कर दिया, उन्हें थोड़ी बात है। हुजूर के पास आता वो साहबी कहने लगे मैं इनको पकड़ कर लाया हूँ। तो हुजूर ने फर्ज फरमाया इसको कोई कभी मिला किन को आइए खामोश हो जा, अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा था जिसने बांध कर दिया, अल्लाह ने फैसला ही कि नियतों करने वालों पर आजाइन करने वालों पर फैसले हो जाते हैं। इतना बड़ा मजमा अगर इस काम को अपना काम बनाने का आज नहीं कर ले और अपनी अपनी जानों को उसके लगाने के लिए अल्लाह से कबूल करवा दे, अल्लाह हमें इसमें कितना बड़ा मजमा रिटायर्ड हो जाता है और फानी है। हमारा काम इतना ज्यादा है कि अगर काम करना शुरू करें सब गुजरने की हो सकता है, हमारे मुजरों की मेहनत खुदों के दरवाजे हमारे मशाला जो मजमा लगा हुआ है लगा हुआ है, हम इस कदर से आगे बढ़े। और उसके बाद जो मजमे को अल्लाह ने सहूलत दी है आसानियत दी है इसी के लिए अपने जीने मरने का हदफ करना कि ये हमारा जीना ये हमारा मरना और इतने काम में लगे हम ये काम में लगे करने हैं अपनी सतह से उठकर काम करते हैं ताकि अल्लाह की मदद और अल्लाह की नुसरत हमारे साथ शामिल याद होकर हम कल कयामत के दिन सब लोगों को दूर होंगे और हम सुकून से मर सकें और सुकून से कब्र में सो सकें और अल्लाह के पास ऐसे हाजिर हों कि अल्लाह हमसे खुश हो उसके नजर खुश हो। इसलिए सब तय करो कि इंशाल्लाह आज इस हफ्ते वाले इज्तिमा में इंशाल्लाह हम जिस सतह पर है अपनी सतह से आगे बढ़ने की नियत है अपनी मकामी मिले صحیح شکل وجود میں آ جائے گی. اگر یہ مجمع طے کر لے گا تو اللہ کے مسلمانوں کو طے کرنے پر اللہ بھی اس کا فیصلہ کرے گا. ہم سب طے کریں کہ اللہ کے اپنے فضل سے ہم کتنے گندے لوگ ہیں, ہم کیسے گندے, ہم ہر آدمی سوچے میرے جسم کے عضو سے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں, پتہ نہیں اللہ کو میری کون سی بات پسند آ گئی, میں تو ایسا نہیں ہوں میرا پسند آ گئی, اللہ کو میری کوئی بات پسند آئی یا میرے ماں باپ کو پسند بات آ گئی اور اللہ نے اتنے بڑی بات کی مجھے توفیق دی, میں اس کی قدر کروں گا. اس سے اچھے اچھے لوگ ہیں, اس کے بعد اللہ چھانٹ چھانٹ کر لایا ہے, اللہ چھانٹ چھانٹ کر اپنے دین کے رسم کے لیے تیار کرتے ہیں. جب میرے اللہ نے مجھے چھانٹا ہے تو میں اس کی قدر کروں گا اور ان شاء اللہ اللہ کو اپنا سچا ہونا بتاؤں گا کہ اللہ تو نے ہم پر احسان کیا, تو چھانٹ کر لایا ہے. اللہ ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ ان شاء اللہ اپنے مرنے جینے کو اسی لیے بنائیں گے. میرے مرنے جینے کو اللہ تیرا تیرا دین, اللہ کا کلمہ دنیا میں سدا ہو جائے. اور اللہ حضرت عمر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب انتقال ہوا, حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ خالد کا عزم سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو, اس کے علاوہ اس کے کوئی جذبات نہیں تھے. ہمارے یہ جذبات ہوں, اللہ بھی گواہی دے دے فرشتے بھی, اس میں سب طے کرو کہ ہم بھی اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروائیں گے. اے اللہ اس عظیم محنت کے لیے ہمیں آخرت کے سب کو فارغ کر دے, اور جب اللہ فارغ کر دیں گے تو ان شاء اللہ ہم اپنی سطح کو بڑھائیں گے, مقامی سطح بھی, اپنی ذاتی دین کی سطح بھی اور قربانی کی سطح بھی. سب مسلمان کا تعلق اللہ سے ہو جائے, اللہ کے گھر سے ہو جائے, اس کے لیے ٹھیک کر میرے بھائی بیٹے میں اہتمام سے لگاؤں اور گھر میں جا کر بات کرتی ہے, گھر میں بیٹھ کر بات کرتی ہے. تو ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ میں آج سے گھڑی دیکھ کر ڈھائی گھنٹے لگا ہوں. بار بار نیت کرتا ہے ماشاء اللہ اللہ قبول کرتا. اور دوسرا, اس سے ہمارے محلے کی جو فضا بنے گی دوسرے محلوں کی فضا کے لیے دوسرا ہمارا کوشش ہے. یہ کمزور نہ ہو, ہماری پوری جماعت پیدل جائے, یہ اپنی مسجد سے جمع ہو کر وہاں پیدل جائیں تاکہ اس کے اثرات پڑے محلے میں. یہ باطل ٹوٹنا چاہیے اور یہ ٹوٹنے کے لیے ہی ہے, بس ہمارے ہتھوڑا بجانے کے لیے ہے. ہمارا ہتھوڑا بجا ان شاء اللہ اس باطل کو اللہ توڑے گا. اس کے لیے ہم سب اپنی مسجد سے پیدل جائیں اس مسجد تک اور اچھی جماعت بن کر جائیں. پورے ہفتے کی اس مسجد میں جو محنت کرنی ہے وہ کرنی ہے تاکہ ہماری کمزور مسجدیں مضبوط ہو جائیں. وہ سب طے کرتے ہو کہ ان شاء اللہ ہمارے دوسرے گشت میں ہم اہتمام کے ساتھ ٹارگیٹ بنا کر کہ وہ محلوں کی جماعت مضبوط کرنے کا ٹارگیٹ بنا کر اس مسجد میں یہ امان زندہ ہو جائے, ایسا ٹارگیٹ بنا کر ہم ان شاء اللہ دوسرے گشت کے بھی کریں گے. سب مسجدوں والے طے کرتے ہیں بھائی, کون کون طے کرتے ہیں, اللہ توفیق دے. اور ایک ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ زندہ ہو, ہر گھر میں ہر محلے والے اس کو نوٹ کریں. ہمارے 200 مکان میں یہ 50 مکان میں تعلیم ہو رہی ہے, دوسرے ان 150 میں نہیں ہو رہی. وہ لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے جہاں تعلیم ہو رہی ہے. جن گھروں میں نہیں ہو رہی, جس دن اس گھر کی باری ہو عظمت کے ساتھ وہاں تعلیم کی عظمت ہم سمجھائیں. یہ ایک عمل ہے جہاں صبح شام میں اللہ رسول کے تذکرے کا, ورنہ ہمارے گھر اللہ رسول کے تذکروں سے خالی ہو گئے. صبح سے شام تک 5 منٹ میں اللہ رسول کی بات نہیں کرتا. ہمارے گھر میں سب کے تذکرے ہیں, اللہ رسول کے تذکرے ہیں. تو سب یہ کرو کہ ان گھروں میں تعلیم کو اتنا سمجھانا ہے کہ اس گھر میں تعلیم کہیں گے شروع ہو جائے. اس لیے فہرست بناؤ, ان مکانوں میں ہو رہی ہے, ان مکانوں میں نہیں ہو رہی. جن مکانوں میں نہیں ہو رہی, جس دن اس مکان کی باری ہو اتنی عظمت سے تعلیم کو بیان کرو کہ ان کا من بھر جائے کہ تعلیم کا ہونا کتنی بڑی بات ہے اور تعلیم کے نہ ہونے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے. کریں گے اس کے ذکر, اللہ کو ہم نے ٹھیک. اب وضو کے لیے وضو بنا لے, نماز ان شاء اللہ پڑھیں گے. سبحان اللہ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ہم دیکھ ان شاء اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, یا اللہ عافیت کا لہر کا کرم کا معاملہ فرما, یا اللہ ہر قسم کی ہر خیر مقدر فرما, یا اللہ ہر قسم کے تمام شروف تنافات سے ہر قسم کی اور پوری حکمت کے اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو تو قبول فرما, اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما, ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما. اے اللہ اس کہنے سننے کو اور ہماری جتنی جو کچھ محنتیں ہو رہی ہے ان تمام کی تمام محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر, اپنی مرضیات کو اپنی مرضیات کو اپنی مرضیات والی محنتوں کو دنیا میں چلنے کا بھی اس کو ذریعہ فرما دے. اور یا اللہ حق اور حق اور حق کی محنتوں کو دنیا میں زندہ ہونے کا بھی اس کو ذریعہ فرما دے. اور یا اللہ غلط اور غلط کی ساری محنتوں کے ختم ہونے کا بھی ذریعہ فرما دے. اے اللہ
اس دین کی محنت میں لگنے کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما, اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما, اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, اے اللہ ہمارے خاندانوں کی تو مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, ہمارے عائشہ قریب کی مغفرت فرما, اے اللہ ہم سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما, ہم پر احسان کرنے والوں کی مغفرت فرما, ہم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما, ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما, اے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما, ہمارے مشائل کی مغفرت فرما جن کے ذریعے سے ہمیں دین ملا ہے, دین کی محنت ملی ہے. اے اللہ جو ان میں سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی تو مغفرت فرما, ان کو اپنے حال میں ٹھکانہ مقدر فرما, جو ان میں سے باقاعدہ حیات ہیں انہیں صحت عافیت تندرستی مقدر فرما, ان کے وجود کو انسانیت کے لیے خیر کا ذریعہ بنا, امت کو ان سے نفع پہنچا, اور یا اللہ جب ان کا وقت آئے انہیں بھی سب کو اور ہم سب کو حسن خاتمہ اپنے مصطفیٰ کو مقدر فرما, ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں کسی خیر سے محروم نہ فرما. اے اللہ تو ہم سے ناراض ہوا ہے, اے اللہ یہ جتنے بھی حالات ہیں وہ ہماری ناراضگی کی وجہ سے ہیں. اے اللہ ہم آج تک کی اپنی مجرمانہ زندگی سے آپ سے معافی مانگتے ہیں, اے کریم اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے, اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, اے اللہ ہم اپنی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے آپ سے معافی مانگتے ہیں, اے اللہ تو ہم سے اپنی امت سے راضی ہو جا, اے اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اس امت کی ذلت کو یا اللہ عزت سے بدل دے, اے اللہ اب اس تہر کو تو بہر سے بدل دے, اے اللہ اس بدبنی کو امن سے بدل دے, اس ذلت کو عزت سے بدل دے, اے اللہ حالات کو سازگار فرما دے, اے اللہ ہماری بدنگولیوں کی وجہ سے ہمیں جب ہنسنا ہمارے اوپر دنیا ہنسے, یا اللہ ان شکروں کو تو ختم فرما دے, لوگوں کو جب ہنسائی کے اللہ موقع ہو گیا ہے پوری دنیا ہم پر ہنس رہی ہے, ہم سے پوچھ رہے ہیں تمہارا اللہ کہاں ہے, اے اللہ تو تیرے کرم کا واسطہ, اے اللہ تجھے تیرے رحم کا واسطہ, اے اللہ تجھے تیرے اسماء الحسنا کا واسطہ, تجھے تیرے رحم کرم کا واسطہ, تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا واسطہ, تجھے تیرے اسماء الحسنا کا واسطہ, تجھے تیرے بدرین صحابہ کا واسطہ, اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, اور یا اللہ راضی ہو کر ہم سے ذلت کے بدلے کو فرما دے, اے اللہ اس امت کے اس امت کی اس امت سے ناراضی کو ختم فرما کر اس امت کی ذلت سے تو نکال دے, یا اللہ توفیق آپ ہی کی طرف سے ملتی ہے, یا اللہ توفیق آپ ہی دیتے ہیں, اللہ اگر آپ توفیق دے دیں گے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یا اللہ آپ نے ہمت جیسے ہمت توفیق دے دی, اکرما جیسے اکرما کو توفیق دے دی, اور یا اللہ بیشی جیسے بیشی کو آپ نے ہدایت دے دی, اے اللہ یا اللہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا کہ تیرے نبی علیہ السلام کے خاندان پر ہم نے کچھ کیا ہو, اے اللہ یہ نبی علیہ السلام کی امت تیرے نام پر جی رہی ہے, تیرے نبی علیہ السلام کے نام پر جی رہی ہے, اور تیرے نبی علیہ السلام کے نام پر جان دینے کو تیار ہو جاتی ہے, اے اللہ ان کے اندر پھر تیری عظمت ہے, تیرے نبی علیہ السلام کی عظمت ہے, یا اللہ ہم کسی وجہ سے آپ ان گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس میں سے نکال دے, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس معصیت سے ہمیں اس کو نکال دے, اور جیسے گنہگاروں کو توفیق دی, یا اللہ ہم بازاروں کو بھی تو اپنے فضل و کرم سے توفیق دے دے, اور یا اللہ اس پوری امت کا رخ تو آپ کی طرف اور آپ کی مرضیہ کی طرف آپ کی مرضیہ کی طرف کر دے, اے اللہ بل آپ ہی کے ہاتھ میں ہے, یا اللہ ہم سب کے دلوں کو آپ کی مرضیت کی طرف پھیر دے, اور یا اللہ جس وقت جس عمل میں مشغول ہونے کو آپ پسند کرتے ہیں ہم سب کا اپنی امت کو اس وقت کے اس عمل میں مشغول فرما دے, یا اللہ ہمیں یا اللہ مخلصین بھی بنا دے کہ جن کو تو منتخب کر کے دو تیری بات دنیا کو ان سے چلاتا ہے, یا اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے, برائیوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بننے سے تو ہماری حفاظت فرما لے, اے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے دین کی اور ہمارے دین کی ساری محنتوں کی اور ساری شکلوں کی اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما, ہر وہ دین کی محنت جو آپ کے وہاں منظور اور مقبول ہے اس کو تو قبول فرما, اور یا اللہ اس کی ہر ضرورت کا لائف سے تکفل فرما, اور ہر دین کے شعبے میں یا اللہ مخلصین عوام انصار پیدا فرما, یا اللہ ہمیں جو نیک وقت لوگوں میں بنا جو مخلصین عوام انصار ہوں, اور یا اللہ خصوصا ہماری اس عظیم محنت کی تو حفاظت فرما, اور جو شکل آپ کا منظر ہے اس شکل کو تو اپنی دنیا اپنے فضل سے اس دنیا میں چلا دے, اور یا اللہ ہمارا اور سب کو یا اللہ ہمیں اور سب کو اس پر تو مشتمع فرما دے, اے اللہ جو چیزیں آپ کو نامنظور ہیں اور آپ کے بارگاہ میں مردود ہیں, اے اللہ نامنظور ہیں ان سب کو ہمارا اس سب کے دلوں سے اپنے فضل سے جھٹک کر نکال دے, اے اللہ اس عظیم محنت کو تو صدیوں تک کے لیے چلانے کے فیصلے فرما دے, اور اس کے لیے ہمیں استعمال فرما دے, اے اللہ اس کے لیے جو محنت لے کر چلے ہیں یا اللہ مراشد عمر الہام فرما، یا اللہ مراشد عمر الہام فرما، مراشد عمر الہام فرما، طالب غیب شامل احوال فرما، مہمات عمر کی مدد فرما، جو مشورے ہو رہے ہیں ان مشوروں میں یا اللہ تو خیر اور روشن مقدر فرما، اور یا اللہ اس کے بعد جو اسباب کیا ہوئے ہیں ان اسباب میں خیر اور برکت مقدر فرما، ان اسباب کو یا اللہ عالمی ہدایت کا ذریعہ فرما، اور یا اللہ اب تک کے جو ہمارے مشاہد کے اسباب ہوئے ہیں اسے بھی قبول فرما، جو آئندہ ہونے والے ہیں خصوصاً ان ملکوں کے لیے اور عموماً پورے عالم کے لیے اس کو تو قبول فرما لے، اے اللہ جو ملک اب تک نہیں کھل پائے ہیں اے اللہ ان ملکوں کے کھلنے کی سبیل پیدا فرما، اور یا اللہ وہاں جماعتوں کے پہنچنے کی شکلیں پیدا فرما، اور یا اللہ ہمیں اس کے لیے استعمال فرما، ہر ایک ایک آدمی کو اس کے لیے استعمال فرما لے، اے اللہ یا اللہ پورے دنیا میں جہاں میں مسلمان اسلام حالات میں ہیں اے میرے اللہ ہر جگہ سکون کی فضا قائم فرما دے، یا اللہ سب کو معاف فرما دے، یا اللہ سب کو تو معاف فرما دے اور سب کو توبہ کی توفیق دے، یا اللہ ہم سے جو قصر ہوئے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ہم سے کیا قصر ہوئے ہیں، ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، اے کریم اللہ ہمیں اور سب کو معاف کر دے، یا اللہ اپنے قہر کو قہر سے بدل دے، آپ کی ناراضگی کو ناراض مزہ سے بدل دے، اللہ اس عالی دربار پر شب جمعہ میں آپ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، اے اللہ ہم سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی اسلام اور مسلمانوں کے کاروبار ہیں ان میں محنت کرنا قائم فرما، ان کے دلوں میں تو مجتمع فرما، اور یا اللہ خیر ان کی اعانت فرما، اور یا اللہ ان کے تدابیر میں حسن پیدا فرما، اور انہیں یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خیر کی یا اللہ شکست دیا، اور یا اللہ جو غلط سوچ رہے ہیں یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، اور یا اللہ میرے دل کے اندر میں ہدایت نہیں ہے، اور یا اللہ انہیں تو اپنی ذات میں مشغول فرما دے، اور یا اللہ انہیں آپس میں الجھا دے، اور یا اللہ ان سے اس امت کو اپنے فضل سے نجات دے دے، اللہ ہم برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے، اللہ ان کے کے لائق نہیں ہے، اللہ ہم اور اس پوری امت کو اس ساری آزمائشوں سے یا اللہ کو نکال دے، خصوصاً ہمارے ملک میں یا اللہ جو ہمارے نظر میں پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ ادائے دین کو تو یا اللہ کو تیرے دین کا معین مددگار بنا دے، اور یا اللہ ان کو اپنے دین دین کے چلنے کا ذریعہ بنا دے، اور یا اللہ میرے کے مقدر میں اسلام اور ایمان نہیں ہے، یا اللہ ان ظالموں کے تسلط کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے، اور یا اللہ ان ظالموں کے تسلط کو ختم فرما دے، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وہ ساری شکلیں دوبارہ زندہ فرما حرمین شریفین کی جو تیرے نبی علیہ السلام کے زمانے میں قائم تھی، وہاں آنے والوں کو وہاں سے دین کے لیے دین کی محنت کے لیے ان شکلوں کو اپنے فضل و کرم سے قائم کرنا، ان شکلوں کے قائم ہونے میں ہمیں بھی استعمال فرما لے، اللہ ہمیں بھی استعمال فرما لے، یا اللہ بلاد عربیہ اسلامیہ کی حفاظت فرما، صحیح بلاد وہاں طے فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ تو پیدا فرما، اے اللہ قیامت تک کی ہماری نسلوں کو قبول فرما لے، ظاہر اور برباد ہونے سے تو بچا لے، اے اللہ قیامت تک کی ہماری نسلوں کو ایمان اور اسلام مقدر فرما، ہماری اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا اور آخرت کا بہترین ذخیرہ بنا، ہماری اولادوں کو ظاہر اور برباد ہونے سے تو بچا لے، اے اللہ انہیں صلاح روشت اور ہدایت مقدر فرما، وہ زندگی عطا فرما جو آپ چاہتے ہیں، ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنا، ہمیں اپنے والدین کے لیے بابا لے جان کرنے سے حفاظت فرما، یا اللہ تیرے حق میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، تو اپنی بارگاہ میں ہم آپ کے حقوق کو ہمیں معاف فرما دے، تیرے بندوں کے حق میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہو اے اللہ اس میں ہم تیرے بندوں کو نہیں جانتے ہیں جس کے ساتھ ہم سے کیا زیادتیاں ہوئی ہے، اللہ تو ہماری طرف سے ان کو راضی فرما دے، اللہ ہماری طرف سے ان کو راضی فرما دے، کسی کے حق میں ہمیں مؤاخذہ نہ فرما، کسی کے حق میں ہماری پکڑ نہ فرما، اے اللہ ہمارے سارے اعمال کو خالص تیرے لیے بنا، ہمیں ریا نام و نمو شہرت سما ان تمام گندی باتوں سے اپنے فضل و کرم سے تو بچا لے، ہمارے ہر عمل کو تیرے لیے بنا دے، مزید ہمیں عمل کی توفیق دے، اے اللہ ہمیں اخلاص و الہیت مقدر فرما دے، ہمیں ضائع اور برباد ہونے سے بچا لے، اے اللہ ضائع اور برباد ہونے سے بچا لے، اے اللہ ہمارے زندگیوں میں تیرے نبی علیہ السلام والے اعمال اور اخلاق ہمارے اندر پیدا فرما دے، تجھے جو اعمال اور اخلاق پسند ہے یا اللہ تمام کے تمام مکارم اخلاق ہمارے اندر پیدا فرما دے، یا اللہ تمام یا اللہ بری باتیں ہماری طبیعتوں سے تو اپنے فضل و کرم سے نکال دے، یا اللہ ہم آپ سے اس کا سوال کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہے، یا اللہ تو سب کو جانتا ہے، یہ ساری گندگیوں کو ہماری طبیعتوں سے نکال دے، ہمارے وجود کو انسانوں کے لیے خیر کا اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اللہ خیر اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ کل ہمارا مشورہ شروع ہو رہا ہے, یا اللہ پورا صبح جمع ہوگا, یا اللہ جو اس میں ہمارے صوبے کے لیے خصوصاً اور پورے عالم کے لیے خیر کی باتیں ہم, اے اللہ وہ ہم سب کے لیے مقدر فرما. ہماری بیٹیوں کی جماعت پیش ہونے والی ہے, اے اللہ تیرے بنیاد پر ہماری مسلات کی جماعت, ہماری دو جماعت مسلات کی تین جماعتیں محروم کی تیار ہوئی ہے. اے اللہ ان کے سارے امور عافیت کے ساتھ یہی آسان کروا, جن ملکوں میں یہ حضرات جائیں گے ان کے ملکوں کے اسباب آسان کروا, اور اس ملکوں کے لیے خصوصاً اور عموماً عالم کے لیے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے. ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے نیتیں کی ہیں, عزائم کیے ہیں, اے اللہ اپنے فضل سے تو توفیق شامل حل کرنا, ہر قسم کی آسانیاں پیدا کرنا, اور یا اللہ ہر ایک کے لیے یہ عزائم اور نیتیں کرنا عافیت کے ساتھ آسان کرنا. باقی یا اللہ جتنی جہاں جہاں اجتماعات مشورے ہو رہے ہیں سب کے خیر اور بھلائی کا مطلب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما, جن چھوٹائی سے ہونا چاہیے اپنے فضل و کرم سے اس سے ہمیں عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہماری بات قبول فرما. جزا اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم.